Welcome to an extremely heavy but extremely enriching episode of The Ranveer Show. Back when I was starting Monk Entertainment with Virat Sheth, we were just two fresh grads from engineering college. We hadn't studied business at all. And back in the day, something that helped me a lot in terms of learning business was this YouTube channel called Vivek Bindra Motivational Speaker. It's a Hindi YouTube channel. His audience is primarily from the Northern Belt in India, a little bit of the West, a little bit of Central India, but primarily it's a North India based channel. Now, if you've actually traveled in North India, you'll find that people there honestly are a lot richer. A lot of folks have created these massive B2B, that's business to business businesses. They've learned how to sell fantastic products and they're extremely savvy when it comes to business. Vivek Bindra is the emperor of all those people. Go to the Northern Belt sometime. Go meet a successful businessman. Chances are he knows who Vivek Bindra is. His brand, BadaBusiness.com, is possibly India's leading edutech brand. It's putting MBA colleges out of business. That's the power and influence that this man has created. He's the true definition of what we refer to as influencers. And he's created that influence from a place of deep, extreme levels of knowledge. That's his power. He's someone who lived as a monk in his 20s. He studied the Bhagavad Gita. Then he studied business in detail. And now he's the top business coach in India. I'm going to allow you to sink into this conversation, which went everywhere from business to spirituality to NoFap to his life that he spends without a family to even his practice of daily football. A well-rounded conversation that will be a version of an MBA crunched into an hour. Vivek Bindra on The Ranveer Show. And guys, if you're not up for consuming a podcast that's this long, go subscribe to The Ranveer Show clips on YouTube. We've uploaded multiple clips of Vivek Bindra on that channel so that you can binge watch all those clips, gain knowledge one bit at a time. But of course, if you're someone who wants to get educated, who wants to expand in terms of mindset, who wants to grow to that next level, way above your peers, way above your competition, sink in to the audio version of this podcast. Enjoy yourselves. Vivek Bindra, sir, my online human form of an MBA. Thank you for being on The Ranveer Show.
Thank you. Thank you, Ranveer. Thank you very much. The beer bicep super champion.
Sir, aapse maine bahut kuch seekha hai. I think we were just taking 15 minutes before this recording. Bahut sara business knowledge, I feel. Agar aap India mein business start kar ro, aapko ek Indian specific mindset se business karna padta hai. To India specific business mindset maine directly aapke video se seekha hai. To, so honestly, my first question to you is ki आपने ये सब कहाँ से सीखा? क्योंकि आपके भी लाइफ में एक विवेक बिंद्रा शायद थे, आई थिंक. तो आपका विवेक बिंद्रा कौन है?
मेरे विवेक बिंद्रा तो नहीं, मेरे तो मतलब जो मेंटर हैं वो लॉर्ड कृष्ण है. पर ये बात समझ आई मुझे कृष्ण से, दैट यू लुक फॉर द बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ योर कस्टमर विच ही इज नॉट एबल टू सॉल्व ऑन हिज ओन विदाउट सम एक्सटर्नल इंटरवेंशन. सो वी आइडेंटिफाई टू क्वेश्चंस. वन, what is the burning problem? Second, how do you solve it in such a way that he cannot solve on his own without you? So these are the two things that we have focused. Wahi se hamara content nikla, wahi se hamara research hua. Google pe dependent nahi the, consumer pe dependent the.
Beautiful, sir. Sir, aapki age kya ab?
I am 38 now. I've just turned 38.
Okay. I always had this question when I used to watch your videos. So I think I discovered your channel when I was about 23, sir. Sir, when you were in your mid-20s, aap kya kar rahe the tab? Like, aap kahan kaam kar rahe the? Like, what was happening in your life? And what was your mindset?
Maine bada secret rakha hai usko hamesha. When I was in my mid-20s, early 20s, I was in Brahmachari Ashram. Tab main, yeah, I was like a monk at that time. So main, I was reading scriptures. Main thoda shastra padhne mein laga tha.
Okay.
Ye abhi cash flow management, working capital, cost of risk, business, strategic advantage, consumer advantage, ये सब बाद में. लेकिन MBA मैं पहले कर चुका था अपनी, मैनेजमेंट की पढ़ाई कर ली थी. पर मैं शास्त्रों की पढ़ाई करना चाहता था. मैनेजमेंट की पढ़ाई में मुझको वो सब्सटेंस नहीं मिला जो शास्त्रों की पढ़ाई में मिला था.
तो फिर ये स्विच कैसे हुआ?
ये स्विच हुआ मेरे मेंटर के इंस्ट्रक्शन पे.
आपके मेंटर कौन है सर?
मेरे मेंटर मेरे गुरुदेव हैं, जो कि जहाँ मैं गुरुकुल में रहता था, तो वो वहीं पे ही गुरुजी मुझे मिले, जिन्होंने गाइडेंस डायरेक्शन दिया.
ब्यूटीफुल सर. सो तो बेसिकली TRS पर जो हमारा पॉडकास्ट है, इस पर बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी की भी बातें होती है.
राइट.
तो आई एम जस्ट क्यूरियस कि आपके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी इंट्रोडक्शन कहाँ से हुई, क्योंकि आपने मटेरियल वर्ल्ड में भी बहुत सारा आपने सक्सेस देखा है, मटेरियल सक्सेस मिला आपको लाइफ में. बट आई फील कि जब आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल सक्सेस होता है, तब मटेरियल सक्सेस की एक क्या बोलते हैं, वो डोर खुल जाता है, दरवाज़ा खुल जाता है. सो सर, ये स्पिरिचुअलिटी की एंट्री कैसे हुई आपकी लाइफ में? पहले
स्पिरिचुअलिटी की एंट्री ऐसे हुई थी कि मैं और मेरे कुछ दोस्त, हम लोग वृंदावन में गए थे और वहीं हमें कुछ मेंटर्स मिले थे, जिनसे हमने कुछ क्वेश्चन आंसर किया. तब उतने सिंसियर नहीं थे हम, लेकिन पर क्यूरियोसिटी बहुत थी. और वहीं पे मेरे को इंट्रोडक्शन मिला भगवद गीता का, और वहीं से असली ताकत आई. वैसे आपने बोला इतना सक्सेस टेस्ट किया, इतना हमें सक्सेस मिला, मैं उसमें बिलीव नहीं करता. मेरा सक्सेस इसी पर डिपेंड करता है कि मेरा जो एंड कंज्यूमर है उसको कितनी सफलता मिल रही है. सेंस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ना, सेंस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा मोटिवेटर है. अगर आपको सस्टेन्ड मोटिवेशन चाहिए, लाइफ बहुत छोटी है रणबीर भाई, बहुत छोटी है. आज इस वीडियो के बाद आप रहेंगे, मैं रहूँगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है. इस लाइफ में कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो असली सक्सेस है. कितने लोगों की लाइफ में परिवर्तन ला सकते हैं. बिफोर वी लीव द वर्ल्ड, हाउ मच वी हैव इंश्योर्ड दैट इट हैज बिकम बेटर देन इट व्हाट इट वाज बिफोर. दैट इज द फोकस.
ब्यूटीफुल सर. सर आई ऑनेस्टली फील कि जो भी इंसान के लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का इतना ज़्यादा इफेक्ट होता, आई फील कि वो इंसान की लाइफ में उनके पास्ट में कोई डार्क इंसिडेंट्स होते हैं, पेनफुल इंसिडेंट्स होते हैं. सो इफ़ यू आर कम्फर्टेबल अबाउट इट सर, मुझे आपको वो कैरेक्टर बिल्डिंग इंसिडेंट्स के बारे में पूछना है कि स्पिरिचुअलिटी की एंट्री होने से पहले वो कैरेक्टर बिल्डिंग इंसिडेंट्स क्या थे? क्योंकि व्हेनेवर आई सी योर वीडियोज़, आई फील कि आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, जो आपका खुद का बिलीफ सिस्टम है, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इन दोज बिलीफ्स. But I feel it's begun from a place of a lack of confidence. Yeah, you know, you've seen there has been a different Vivek Bindra in the past. तो क्या हुआ था सर स्पिरिचुअलिटी के पहले?
रणबीर भाई, इसमें क्या है, आपने बोला स्पिरिचुअलिटी से पहले कैरेक्टर बिल्डिंग क्या था. फ्रेंकली स्पीकिंग, स्पिरिचुअलिटी से पहले सब कुछ कैरेक्टर स्पॉइलिंग होता है, कैरेक्टर बिल्डिंग तो स्पिरिचुअलिटी के बाद ही शुरू होता है. सो वट एवर कैरेक्टर बिल्डिंग हैज हैपेंड इज पोस्ट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस. पर हाँ, ये बात सही है कि इससे पहले मेरे लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टी जो स्ट्रगल तो थे, बहुत सारी समस्याएं रही थी, पर वो जो ताकत मिली मेरे को वो वहीं से मिली जब मैं पहली बार वृंदावन गया था. और सी द नॉलेज विल किल द इग्नोरेंस. तो जो ज्ञान दीपे न भास्वता, कृष्ण सेजन भगवद गीता, कि अगर आप ज्ञान का दीपक जला लेते हैं ना, तो उसके बाद नथिंग कैन डिस्टर्ब यू. अभी ना मेरी पर्सनल एस्पिरेशन कुछ नहीं बची, ये सबसे बड़ा मुझको एडवांटेज है. मैं बहुत डिटैच्ड हूँ पैसे से, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है. ऑफकोर्स ऑर्गेनाइजेशन रन करने के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि वहाँ से सस्टेनेबिलिटी आती है. कई बार लोग पूछते भी हैं हमसे कि यार आप फ्री में क्यों नहीं कर देते ट्रेनिंग, फ्री में क्यों नहीं बिल्ड कर देते. मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड किया है जिसकी सस्टेनेबिलिटी चाहिए. अपने घर को आग लगा के बाजू वाले को सेक देना सर्दी में, वो सस्टेनेबल नहीं है. यू नो, यू बर्न योर हाउस विद सम फायर और उसके बाद यू आर गिविंग सम वार्म्थ टू योर नेबर. तो चैरिटी इज़ नॉट सस्टेनेबल. हमने 70 ब्रांचेस क्रिएट करी, 2000 IBCs बनाए, आज 350 एम्प्लॉयज़ हेड ऑफिस में है, 1500 एम्प्लॉयज़ सारे ब्रांचेस में इंडिया में. वी आर हायरिंग 500 मोर पोस्ट कोविड, ड्यूरिंग कोविड. सो वी आर मेकिंग 150 ब्रांचेस आज. हमारा रेवेन्यू ग्रोथ कर रहा है 200%, 300% ईयर ऑन ईयर. इसके अलावा मंथ ऑन मंथ भी कोविड के दौरान भी वी हैव ग्रोन बाय 30%. सो
ब्यूटीफुल.
अच्छी बात क्या है, मैं आपको शेयर करूंगा कि इसे बिल्ड करने के लिए आज देखो हमारे जो चैनल के लीडर्स हैं वो एयरटेल से लावा और ओला के लीडर्स थे. कॉन्टैक्ट सेंटर जो हमने बिल्ड किया, वो मैडम जो हमारे हैंडल करती हैं वो टाइम्स ऑफ इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट थी. जो मेरे प्रोडक्ट हेड हैं वो जबोंग और हाइक मैसेंजर्स में लीडर्स थे. जो मेरे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं वो ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर थे कार्बन मोबाइल और जियोनी मोबाइल के. जो मेरा FP&A है, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, जहाँ से हम बजटिंग प्लानिंग करते हैं, वो NDTV के वाइस प्रेसिडेंट हैं. ये सब अच्छे लोग, लीडर्स हायर किए हमने. जो मेरा स्ट्रैटेजी हेड है वो पहले रहेजाज के स्ट्रैटेजी हेड थे. जो मेरे वीडियो प्रोडक्शन हेड है वो पहले बायजूस का वीडियो प्रोडक्शन देखते थे. जो मेरे चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है वो नेटवर्क 18 और मनी कंट्रोल के CTO थे. जो मेरे इंफ्रा VP है वो इंडिया मार्ट से थे. जो हमारे कंटेंट हेड है वो साइकोलॉजिस्ट और एडुकॉम सॉल्यूशंस हेड करती थी. जो मेरे स्पीकर्स हैं जो हमारे साथ में कंटेंट क्रिएट करते हैं वो ET नाउ से हम लेकर के आए, इकोनॉमिक टाइम्स से. जो हमारे स्ट्रैटेजिक अलायंस देखते हैं वो Zee बिजनेस से. जो मेरे सर्विस हेड है वो वोडाफोन से. हमने क्या किया, अब क्या है, इतना खर्चा होता है, इतनी टीम्स बिल्ड होती हैं ताकि आप एक सस्टेनेबल पावरफुल सोल्यूशन क्रिएट करें. तो हमने सोचा इसको अफोर्डेबल करें, साथ साथ अफोर्डेबल भी करें और स्केलेबल भी करें. सो दैट्स हाउ हमने फिर बिजनेस मॉडल बनाया, जहाँ से हम लोगों को सिखा सकें, उनको मदद कर सकें.
ब्यूटिफुल सर. सर, इन सब चीज़ों में से आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या है अकॉर्डिंग टू यू?
मेरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग डिटैचमेंट है. डिटैचमेंट मेरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि आज मेरी पर्सनल खुद की इच्छा अपने लिए कुछ खरीदने की नहीं है. पता नहीं आपने कभी नोट किया नहीं किया, मैं वही पिंक शर्ट और वही सेम ब्लेजर और वही सब पहन के आ रहा हूँ बहुत सालों से अपने वीडियोस में. कई बार लोग पूछते भी हैं क्या किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला आपको आपका लकी कलर है. मैं आपको बताता हूँ उसका राज. मैं एक बार एक दुकान पे गया, मैंने कहा भाई शर्ट दिखाना ज़रा, पहनना जल्दी रहती है, टाइम नहीं है, मैं मॉल्स नहीं जाता, शॉपिंग करने नहीं जाता. तो ऐसे ही एक दुकान पे गया, उसने शर्ट दिया, पिंक कलर का था, फिटिंग मैंने देखा ठीक आया. तो मैंने बोला 10 शर्ट दे दो ये वाली. तो वो हंसने लगा, बोला सेम साइज 10 शर्ट, ऐसा ही डिज़ाइन. मैं बोला टाइम सेव होएगा, ऐसा सब पहन के देखूंगा बहुत टाइम लगेगा. तो मेरा कोई पर्सनल एस्पिरेशन नहीं है. एक मैंने बिजनेस सूट लिया, उसको सिलवाया, देखा कलर ठीक है, मैंने बोला 5-10 सूट ये वाले बना देना, इसी को बदल बदल के पहनता रहूँगा मैं. सो मेरा आज ना कुछ ऐसा नहीं है कि पीपल डोंट वॉच मी बिकॉज ऑफ माई क्लोथ्स, दे डोंट वॉच मी बिकॉज ऑफ माई स्टाइल, बिकॉज ऑफ माई कार, या मेरे पास कोई पर्सनल चॉपर, हेलीकॉप्टर, गाड़ी है कोई. नहीं, कुछ नहीं. पीपल आर विद मी और दे वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द नॉलेज विच आई हैव गेन फ्रॉम भगवद्गीता एंड बिजनेस. तो भगवद्गीता और बिजनेस का अमैल्गमेशन है. तो बेसिकली ये मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो बनी, जो मेरे को सबसे बड़ी ताकत मिली, वो सेंस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन एंड फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट है.
ब्यूटिफुल सर. डू यू फील कि अ कॉलेज स्टूडेंट या यू नो अ यंग प्रोफेशनल कैन क्रिएट अ सेंस ऑफ डिटैचमेंट इनसाइड देमसेल्व्स? कि डज इट टेक मेनी इयर्स टू क्रिएट दैट सेंस ऑफ डिटैचमेंट?
सी, इट्स नॉट अबाउट इयर्स, इट्स अबाउट एसोसिएशन. आप उठते बैठते किसके साथ हो, कॉन्टेंट क्या कंज्यूम करते हो,
इन्फ्लुएंसेस.
बिल्कुल ठीक बोला आपने, इन्फ्लुएंसर्स. आप किसके साथ किसका कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है आपको, इस पर डिपेंड करता है. क्या कहते हैं शास्त्रों में, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए. कि अगर लव मात्र मतलब एक सेकंड का 14वां हिस्सा भी, 14th part of a second, अगर आप राइट एसोसिएशन में बैठ गए और उसकी फीलिंग्स आपके अंदर एंटर कर गई, एकदम गेम चेंज हो जाएगा. ऐसे ही खराब कॉन्टेंट कंज्यूम करने से सब कुछ डैमेज हो सकता है. सो कॉन्शियसनेस इज एवरीथिंग. वही आपको ड्राइव करेगा, योर एटीट्यूड, योर बिलीव्स, योर दैट एक्चुअली ड्राइव योर बिहेवियर. तो ये जो अंदर फॉर्म करना है ना, यही सब बाहर बिल्ड करके देगा अपने को. कॉन्टेंट मुंह से क्या निकलता है वो इंटेंट पे डिपेंड करता है. आपका आज फोरग्राउंड कैसा है वो आपके बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है. इसीलिए मैं हमेशा रूट्स की बात करता हूँ, फ्रूट्स की नहीं करता. मैं करोड़पति बना दूंगा, पैसा कमाना सिखा दूंगा, नहीं. सबसे पहले बिजनेस में भी हम सिखाते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व करो, कॉन्ट्रीब्यूशन का फैक्टर आना बहुत जरूरी है.
ब्यूटिफुल सर. ये टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के बारे में आपकी राय क्या है?
बड़ी सिंपल है सर, मैं टिकटॉक बिल्कुल पसंद नहीं करता. आई एम अगेंस्ट टिकटॉक. मैं पब्लिक में आके वीडियो नहीं बनाया. यूट्यूब पे सीरियस ऑडियंस आती है. टिकटॉक बेसिकली आपको बर्बाद करने के लिए, आपके अटेंशन स्पैन को ख़त्म करने के लिए है. आप चेक करिए कि पहले आधे घंटे का बकरा किस्तों पर आया करता था, उसमें लोग हंसते थे 4-5 बार एक घंटे का. उसके बाद वो आधे घंटे का कपिल शर्मा शो पे हंसते थे, फिर 10 मिनट के स्टैंड अप कॉमेडियन पे हंसा करते थे. फिर उसके बाद आजकल वो जो फेसबुक पे बहुत वीडियो आते हैं ना, वो प्रैंक करते हैं, प्रैंक फिर 5 मिनट के प्रैंक पे हंसा करते थे. आज हंसने के लिए आपको फटाफट डोज चाहिए. 15 सेकंड में आपको हंसना पड़ेगा, मुझको 15 सेकंड में हंसा दो. सो हंसी हैज़ बिकम नाउ सो मच डिपेंडेंट ऑन दिस कॉन्टेंट. आज इशू क्या हो रहा है कि मेरे को सब कुछ जल्दी चाहिए. तो आप अगर कुछ सीखना चाहते हैं, उसका अटेंशन स्पैन खत्म कर दिया टिकटॉक ने. और टिकटॉक पे जो लर्निंग की अपॉर्चुनिटी और पॉसिबिलिटी है वो और रिड्यूस हो गई है, क्योंकि इट्स ऑल एंटरटेनमेंट. एडुटेनमेंट कम है, है बहुत कम है. तो सीरियस कंटेंट कंज्यूमर्स की अगर उनको एडिक्शन लग जाए इस तरह से टिकटॉक पे मूव करने का, तो वो बहुत डेंजरस है आगे चल के. तो आई एम नॉट सेइंग कि मतलब बैन कर दो, ये कर दो, वो कर दो, बट आई एम सेइंग कि अल्टीमेटली आपकी साइकोलॉजी को बिल्ड करने के लिए आपके पास पेशेंस खत्म कर देगा अगर आपको हर 15 सेकंड में सब कुछ इतना फास्ट चाहिए.
सर बट यहाँ सोल्यूशन क्या है? मतलब एज अ बिजनेसमैन आई एम आस्किंग यू कि एंड आई एम नॉट जस्ट आस्किंग यू एज अ बिजनेसमैन, आई एम इवन आस्किंग यू एज समवन हु इज स्पिरिचुअली वेल रेड कि यहाँ व्हाट इज द सोल्यूशन.
देखिए YouTube वर्सेस TikTok के अगर आप कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं सोल्यूशन, तो सोल्यूशन ये है कि मेरे को और आपको बहुत सिंसियर होना पड़ेगा, कम समय में ज़्यादा कंटेंट देना है. शुरू में लोग मेरे को भी बहुत बोलते थे कमेंट बॉक्स में, hey, विवेक बिंद्रा ऐसे करके बोलता है, hey, क्या करता है ये, hey, ऐसे कोई तरीका है बोलने का. लेकिन हमने उस स्टाइल को एस्टैब्लिश किया कि हम कम समय में ज़्यादा कॉन्टेंट देंगे ताकि अटेंशन स्पैन अगर उसका कम भी हो गया है तो वो हमारे साथ रुका रहे. आपने कभी देखा है रणवीर भाई कि अपने वीडियो में बहुत एनिमेशन डालता हूँ मैं, वो एनिमेशन बहुत महंगा पड़ता है. आप तो वीडियोस क्रिएट करते हो, आपको मालूम है कई बार नीचे लोग पूछते हैं कौन सा सॉफ्टवेयर, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि फट से एनिमेशन बन गया. अभी अपनी इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है मेरे पास, इतनी बड़ी टीम बैठी है. आपको पता है क्यों? अगर इतना ईजी होता है एनिमेशन तो कोई भी बना लेता इंडिया में. आप दुनिया भर में कितने चैनल है, कितने मोटिवेशन स्पीकर है, कोई ऐसे लाइव एनिमेशन वो कैरेक्टर क्रिएट करके नहीं डाल रहा है. बिकॉज वी आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी इन माई फ्री कॉन्टेंट ऑल्सो, कि हम फ्री कॉन्टेंट में भी काफ़ी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कि एनिमेशन डाल के दें ताकि उसका अटेंशन स्पैन बने, वो रुके, पूरा वीडियो देखे, फ्री में लर्निंग लेकर के जाए. देखिए मेरे कन्वर्जन कितना होता है हमारा सेल्स में? बहुत थोड़ा होता है. अल्टीमेटली 95-98% जनता तो सब फ्री में ही देख के जाती है ना. और अगर हम वहाँ से कॉन्ट्रीब्यूट कर दें और भारत में थोड़ा सा अंतर असर ले आए, मैंने रीज़न है मेरा, आज मैं इंग्लिश में बोल रहा होता तो पूरी दुनिया मेरी क्लाइंट बनती, आज केवल हिंदी में बोल रहा हूँ तो केवल नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल और थोड़ा सा वेस्ट इंडिया ही मेरा क्लाइंट बन पा रहा, साउथ इंडिया भी छूट गया है मेरा. सो मुझे मालूम है आई एम लूजिंग अ लॉट, बट आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू माई कंट्री, दैट्स आर फोकस.
सर बट वही कंट्री के परस्पेक्टिव से देखो, मतलब आई फील कि नो मैटर हाउ बिग यू एंड मी बिकम एज कॉन्टेंट क्रिएटर्स, ये टिकटॉक का जो कल्चर है ये एक्चुअली इट्स गोइंग टू रीच द कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री सर. तो अभी अगर वो टिकटॉक एकदम दूर वाले गाँव तक पहुँच गया तो वहाँ के लोगों का फिर अटेंशन स्पैन कम हो जाएगा. सो व्हाट इज द सोल्यूशन इन दैट केस?
मेरे को और आपको और जिम्मेदारी लेना पड़ेगा.
ओके
अगर मैं और आप इस समय, ये हमारे साथ और कितने सीजनड कंटेंट क्रिएटर्स हैं, अगर हम लोग जिम्मेदारी लेंगे तो धीरे 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 लोगों को समझ में आएगा कि बॉस देखो, अगर अच्छा कंटेंट कंज्यूम करना है जो आपको ग्रोथ देगा, जो आपको लर्निंग देगा. सी अल्टीमेटली आप कितनी देर तक खाली एंटरटेनमेंट करते रहोगे अपना? आज तो मज़ा आ जाएगा आपको. आप किसी गुजराती को देखो, वो मज़ा नहीं करता, जमा करता है. मज़ा जमा तो वो जमा करना है तो फिर आपको तो सीरियस अच्छा. तो आई थिंक अल्टीमेटली इट डिपेंड्स ऑन कंटेंट क्रिएटर कि वो कितने ढंग से सामने वाले के साथ में उसके साथ में कनेक्ट कर सकता है कि वहाँ से उसका अटेंशन स्पैन होल्ड करके रखे.
सर 2030 में आपको क्या लगता है सिनारियो क्या होगा?
2030 बहुत बदल चुका होगा. मुझको लगता है कि कोविड 2030 को थोड़ा और जल्दी लेके आ रहा है. वो 2030 जो डिले होने वाला था वो शायद 2030-2025 में आ जाएगा. डिजिटल अडेप्टेशन बहुत बढ़ चुका होगा तब तक. ह्यूमन कनेक्शंस और रिलेशंस और घट चुके होंगे 2030 तक. और आई थिंक इट्स टाइम फॉर इंडिया. इंडिया इज़ गोइंग टू सर्टनली पिकअप. इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज बढ़ चुकी हैं इस समय. और विद द काइंड ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन एंड डिजिटल अवेलेबिलिटी टू कंज्यूम ग्लोबल कॉन्टेंट, इट्स टाइम फॉर इंडिया टू पिकअप नाउ.
सर बट अभी मतलब ये कोविड की वजह से अभी बिजनेस का अपॉर्चुनिटीज क्या होने वाला है? मतलब जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें कौन से इंडस्ट्रीज के बारे में ज्यादा सीखना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू?
सी इट्स नॉट अबाउट इंडस्ट्री, इट्स अबाउट द स्केलेबिलिटी विच विल कम थ्रू टेक्नोलॉजी. आप देखें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना कि बिजनेस को बड़ा करने के लिए ज़्यादा मैन पावर नहीं, ज़्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए आपको. सो जो टेक की अडेप्टेबिलिटी है वो अभी आएगी. दूसरा प्लेटफॉर्म ड्रिवन बिजनेसेस बढ़ जाएंगे. प्लेटफॉर्म ड्रिवन बिजनेस वो है जहाँ पे कनेक्टिंग दी अनकनेक्टेड, यानी कि जो लोग कनेक्टेड नहीं थे आपस में अपने उनको भी कनेक्ट कर दिया. प्लेटफॉर्म ड्रिवन का मतलब क्या हो गया? जीव जीवस्य जीवनम, जब लोग एक दूसरे पर डिपेंड होकर के अपने आप बिजनेस को. सो ऑफकोर्स मैंने बिजनेस पे तो बहुत सारे वीडियोज दिए हैं यूट्यूब पे जहाँ मैंने इनके बारे में बातचीत किया है. पर आई थिंक पोस्ट कोविड इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि भारत की सरकार को बहुत सारे काम करने हैं इस समय. हमारे को इंडस्ट्रियल नेटवर्क क्लस्टरिंग करनी पड़ेगी. चाइना में हर चीज़ के लिए शहर बना हुआ है. आपको मोबाइल का अलग शहर है, लाइट का अलग शहर है, कपड़ों का अलग शहर है. इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा बहुत सरकार को खर्च करना पड़ेगा. मुझको लगता है हमारे को जजेस बढ़ा देने चाहिए ताकि हम लोग के यहाँ करप्शन थोड़ा कम हो सके. आज टुडे देयर आर 20 जजेस पर मिलियन. मुझको चाहिए कि अबाउट 70 जजेस पर मिलियन हो जाएं, तो जो जजमेंट में करप्शन कम करने के लिए 10 साल लगते थे, अगर वो फटाफट से जजमेंट 8 महीने 9 महीने में आ जाए तो लोग चोरी चक्कारी करेंगे ही नहीं. चीज़ें बहुत सारी बदलेंगी. मैं मेरे माइंड में तो बहुत सारी बातें हैं पर मुझे लगता है कि फिर वो काफ़ी देर हो जाएगी. मैं लंबा आंसर देने की जगह आई एम होल्डिंग
सर. बट नहीं, आई एम एक्चुअली वेरी क्यूरियस. आपने एक चीज़ कही कि वो कनेक्शन जो आपने अभी वो कॉन्सेप्ट पर थोड़ा अगर आप अब ज़्यादा उसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, जस्ट थोड़ी सी ज़्यादा, लाइक हाउ विल टेक चेंज बिजनेस. और ये जो आपने एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट कहा था, कैन यू गिव एन एग्जांपल जस्ट सो दैट द लिसनर्स अंडरस्टैंड.
बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैंने अपने चैनल पे तो बहुत दिए, पर आपको जिस भी कोई भी इंडस्ट्री का नाम लो मैं एग्जांपल दे दूंगा. गोलगप्पे वाला भी है, उसको भी अगर काम करना है, कोई भी इंडस्ट्री आप उठा लो. आप तो फिटनेस पे बहुत काम करते हो, तो फिटनेस में जिमनेजियम्स आर गोइंग टू बी टफ नाउ. आप क्या करना है, जिम एट होम का कॉन्सेप्ट लेकर के आए. एक आदमी फटाफट से सारे वीडियो शूट करे और साथ में टेक्नोलॉजी वाला उसको टेक पे फटाफट ऐप पे कंटेंट को डाले और जितने जिम्स हैं उनके साथ में फ़ोन पे बात करें, भाई आपके पास 500 कस्टमर, आपके पास 250 कस्टमर, आपके पास 300 कस्टमर है, मैं आपके साथ पार्टनरशिप करता हूँ, वाइट लेबलिंग कर दूंगा, ऐप पे आपका नाम आ जाएगा, ऐसा लगेगा कि आप ही की ऐप चल रही होगी और आपकी ऐप पे हम सारा फिटनेस का कंटेंट देंगे कि लोग जिम एट होम यूज़ करेंगे तो जिम जाने की ज़रूरत नहीं. अब हुआ क्या, एक आदमी को एक, अब देखो गोल्ड्स जिम इतनी बड़ी चेन थी, खत्म हो गई, बैंक्रप्सी फाइल कर दी. तो आपने ब्रिक एंड मॉर्टर को जैसी टेक्नोलॉजी पे लेके आए और जिम एट होम का कॉन्सेप्ट बिल्ड कर दिया और ऐप पे ही सारा कंटेंट देना शुरू कर दिया, तो सारे जिम्स के कस्टमर आपके कस्टमर बन सकते हैं. आपको नया कस्टमर एक्वायर करने के लिए एडवर्टीजमेंट नहीं करना, उसके पास कस्टमर ऑलरेडी है, आपने उसके साथ कोलैबोरेशन कर लिया, इट्स नॉट कॉम्पिटिशन. उसका कस्टमर आपके पास आ गया तो आपको क्या चाहिए, बिजनेस शुरू करना है, चार को फाउंडर चाहिए. पहला को फाउंडर क्या करेगा, वो सारी एक्सरसाइज करके दिखाएगा. दूसरा को फाउंडर सारे वीडियो शूट करेगा, एडिट करेगा. तीसरा को फाउंडर टेक्नोलॉजी बिल्ड करके ऐप बनाएगा. चौथा को फाउंडर सारे जिम्स के साथ फोन पे बात करके पार्टनरशिप बिल्ड करेगा. चार लोग हो गए, 25-25 टका आपस में बांट लिया, पैसा लगा ही नहीं, कस्टमर भी फ्री में आ गया, टेक्नोलॉजी भी फ्री में बन गई, मार्केटिंग सेल्स भी हो गई और आपका वीडियो भी बन गया, एडिट करके आपने डाल भी दिया. आप चार पार्टनर बल्कि दोस्त फटाफट अगर ये बना लें इस मॉडल को तो क्या हो गया, वो स्केल कर गया. जिम के पास कस्टमर है, कस्टमर मेरे पास आ गया और रेवेन्यू क्या है, वैसे जिम में मैं 500 ले सकता हूँ, ऐप में 5 लाख कस्टमर ले सकता हूँ. अब कनेक्टेड या अनकनेक्टेड हो गया. अब जिम वाला आपका माल बेचेगा क्योंकि आपने ऐप पे जिम वाले का लोगो डाल दिया, उसका इंटरफेस डाल दिया, ऐसा लगेगा कि इसी जिम का ऐप है. जितने उस जिम के कस्टमर है उनको अपना ऐप दिखेगा. मतलब बेसिकली आप कोई भी बिजनेस मुझे बताओ, मैं उस बिजनेस में आपको सोल्यूशन दे दूंगा. ये हमारी एक्सपर्टीज है. पहले रणबीर भाई टाइम लगता था बिजनेस को समझने में, अभी क्या है, रोज हजारों लाखों बिजनेस हम देखते हैं, उनको इतने को टर्न अराउंड कर दिया. अब तो कुछ भी बता दो फटफट ऐसा बता देंगे आपको.
सर दो क्वेश्चन है. पहली क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि अभी लोग ज्यादा खेती में फिर से एंटर करेंगे, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री विल स्टार्ट बूमिंग, देयर आर थिंग्स लाइक दैट. सो इज इट ट्रू कि देयर विल बी मेनी एग्रीकल्चर मिलियनेयर्स एंड बिलियनेयर्स इन इंडिया?
नहीं, एग्रीकल्चर मिलियनेयर बिलियनेयर्स तो नहीं होंगे, वो बहुत मुश्किल है. बहुत सारे तो बिल्कुल नहीं होंगे. उसके कारण है 3-4-5, मैं आपको बता दूं कि हमारे यहां ना अर्बनाइजेशन कम है. अगर अर्बनाइजेशन विलेजेस में बढ़ जाए तो कुछ इंप्रूवमेंट की संभावना है,
यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स वगैरह.
करेक्ट. देखो पता है क्या है, जहां पे 1 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं ना वहां पे सारी संभावनाएं बिल्ड हो जाती हैं. पर जो गांव है बहुत ज्यादा स्पार्शली अरेंज्ड हैं, ऐसे बहुत दूर दूर छोटे छोटे टुकड़ों में होते हैं, तो उनके पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना सप्लाई चेन है, ना वो इक्विपमेंट्स हैं. ये सब चीज़ें तब होंगी जब अर्बनाइजेशन आएगा तो किसान मैनेजर बन जाएगा और रोबोट खेती करेगा. वहां पे आएगी एफिशिएंसी और वहाँ पे सप्लाई चेन कनेक्टेड होगा. आज मैं आपको बता दूँ कोई अबाउट 28% का अर्बनाइजेशन है इंडिया में, पर ग्लोबल स्टैंडर्ड 50% का है. सो 50% जब अर्बनाइजेशन आ जाएगा और क्लस्टरिंग हो जाएगी उसकी और इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्ल्ड कॉरिडोर्स बन जाएंगे बड़ी बड़ी सड़कों के साथ में, तो सप्लाई चेन कनेक्ट होगा. एक लाख दो लाख लोगों का गाँव होना चाहिए, 1 लाख लोगों का गाँव होना चाहिए ऐसा गाँव, थोड़ा बड़ा गाँव, थोड़ा छोटा शहर बड़ा गाँव जैसा, तो वहाँ से चीज़ें कनेक्ट होंगी और तब जाकर के एग्रीकल्चर में संभावना है. वरना एग्रीकल्चर इज फॉर सेल्फ सस्टेनेबिलिटी, एग्रीकल्चर राइट नाउ इज नॉट फीजिबल. बहुत बड़ा ग्रोथ की पॉसिबिलिटी नहीं दिखती है. हाँ, यह माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ठीक है. इसका अर्थ क्या हुआ, माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब एक आदमी 20-25 हज़ार रुपये महीना कमा ले, 10 गायें रखना शुरू करे, उसको सेल्फ सस्टेन कर ले और वहां से मॉडल बनाए, तो कैटल पे काम करे, तो वो क्या है, माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप है. मिलियनेयर बिलियनेयर जो आपने बोला वो संभव नहीं है.
ओके, तो अगर किसी को मिलियनेयर बिलियनेयर बनना है तो व्हाट आर द इंडस्ट्रीज अकॉर्डिंग टू यू?
मैं कभी भी इंडस्ट्रीज पे फोकस ज्यादा नहीं करता, मैं फोकस करता हूँ स्ट्रैटेजी पे. स्ट्रैटेजी का अर्थ क्या हुआ, जैसे मान लो स्टील ट्यूब की इंडस्ट्री है. अब स्टील ट्यूब क्या कमोडिटी है, 2% का मार्जिन है, यानी कि आपने अगर 100 रुपए का माल बेचा आपको 2 रुपया बचेगा देखने में तो, या 1.5 रुपया बचेगा उस पर, 1 रुपया बचेगा देखने में, मार्जिन नहीं है. लेकिन अगर आपने पहले दो प्रश्नों का उत्तर दे दिया, व्हाट इज द बर्निंग प्रॉब्लम, हाउ डू आई सॉल्व इट इन सच अ वे दैट माय कस्टमर कैन नॉट सॉल्व ऑन हिज ओन विदाउट मी, क्या ज्वलंत समस्या है और कस्टमर मेरे बिना अपने आप उसको सॉल्व ना कर पाए, तो आपको ना जैसे आपके पास 20 आइटम है, 20 में से 4 ऐसी होनी चाहिए जो किसी के पास नहीं है, उस 4 के चक्कर में कस्टमर आपके पास आ जाएगा. यानी कि 20% ऑफरिंग अगर आपके पास यूनिक है किसी भी इंडस्ट्री में, आप उस इंडस्ट्री के राजा बन सकते हैं, आप उस इंडस्ट्री में मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं. तो मैं इंडस्ट्री ऑफकोर्स इतना ध्यान रखे कि सनराइज होनी चाहिए, सनसेट नहीं होनी चाहिए. सनसेट इंडस्ट्री जो डूब रही है, सनराइज जहां पे अडॉप्शन कर्व बिल्ड हो रहा है, लेकिन विद इन दैट सनराइज इंडस्ट्री आपको वो नहीं करना जो सब कर रहे हैं. एटलीस्ट 20% ऑफ योर ऑफरिंग शुड बी सो यूनिक कि वो मैक्सिमम कस्टमर आपके पास पुल करके ले आए, तो बाकी 80% आइटम जो सब बना रहे थे वो भी आपसे खरीद लेगा, जो सब बेच रहे थे वो भी आप ही से ले जाएगा, बोले यार ये ले रहा हूं तो दूसरा भी सब यहीं से ले लेता हूं ना, तो वहां पे बात बनेगी. लेकिन अगर आप वही बेचते रहे जो सब बेच रहे थे, तो आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, उधार देना पड़ेगा और गेम ओवर हो जाएगा.
सर, और एक्चुअली दूसरी क्वेश्चन है कि इन सारे लोगों का जॉब जिसका जो फायर हो गए हैं, जिनका जॉब लॉस हुआ है, व्हाट शुड बी देयर माइंडसेट राइट नाउ? आपने इस चीज़ पर एक वीडियो बनाया है, वो मैंने वीडियो देखा है, बट जनरली स्पीकिंग, सो जैसे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, लाउंजेस बार्स प्रॉब्ली हैव शट फॉरएवर, तो वो जो वेटर्स है हु हैव लॉस्ट देयर जॉब, या यू नो द शेफ्स हु हैव लॉस्ट देयर जॉब, व्हाट कैन दे थिंक ऑफ नाउ? What are the places? Can they think of a full industry switch? Can you name some of the sunrise industries maybe? आप बोलो सर.
नहीं देखिए, पहले तो मैं ये बताऊँ आपको, पहले नंबर वन रूल ये बना लें, जैसे मैंने उस वीडियो में भी बोला, मैं अभी भी बोलूँगा, दैट फाइंडिंग अ जॉब शुड बी योर जॉब, दैट्स वन थिंग. देखिए पता है सब बंद नहीं, दुनिया बंद नहीं होने वाली. आज पता है मैं आपको बताऊँ रणबीर भाई, जो लोगों में आपको सेंटिमेंट खराब दिख रहा है ना, इकट्ठा कर लो, जो आज रो रहे हैं, डिप्रेशन में परेशान है, जिस दिन वैक्सीनेशन बन गई उसी दिन उनसे पूछना, बोलेंगे सब कोई दिक्कत नहीं, सब बहुत अच्छा, सब बहुत अच्छा है. एक बार ही वैक्सीनेशन आ गई, लगा अरे कोई दिक्कत नहीं है, सब चल गया, अब तो दिक्कत नहीं. तो पता है क्या है, कुछ सब बंद नहीं होने वाला है, थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, थिंग्स आर गोइंग टू इम्प्रूव. ये टेम्प्ररी शटडाउन दिख रहा है, इस समय प्रिपरेशन का टाइम है. प्रॉब्लम क्या, इस समय बैठ के जो टिकटॉक देख रहा है ना, उससे बड़ा घोर अज्ञानता के लक्षण कोई नहीं प्रकट कर रहा. मैं मूर्ख जैसा कठोर शब्द बोलने का प्रयास कर रहा हूँ कि ना करूँ. सो बेसिकली ये टाइम था प्रिपरेशन का. अभी यहाँ पे बैठ करके आप देख रहे हो वो जो गाना गाती है लड़की, ऐसा ऐसा करती है, ऐसा ऐसा करती है, वो ऐसा ऐसा, एक साउथ इंडिया में हीरोइन है ना जो करती है वो और वो तेरी प्यारी प्यारी दो अखियाँ, ऐसा ऐसा लड़का डांस करता है. ये अगर आप देखने में समय लगा दिए तो प्रिपेयर नहीं कर पाओगे. ये टाइम देखिए, जिस दिन ये कोविड का क्राइसिस कम हुआ, सबसे आगे कौन जाएगा, वो जो सबसे ज्यादा प्रिपेयर्ड है, जिसने इस समय सबसे ज्यादा तैयारी करी है, वही तो सबसे पहले सबसे आगे जाएगा. मेरा मानना ऐसा है, सप्लायर भी चाहिए, कस्टमर भी चाहिए, बायर भी चाहिए, एम्प्लॉय भी चाहिए, एम्प्लॉयर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए होगा, बस कुछ दिन की बात है. सो राइट नाउ जस्ट अप कीप अपस्किलिंग योरसेल्फ एंड जस्ट इस समय वो प्रिपरेशन कर लीजिए जो आप अदरवाइज नहीं कर पाते, क्योंकि उस समय आप बोलते हो टाइम नहीं. आज टाइम है तो आप सावधान इंडिया देख रहे हो, चैन से सोना है तो जाग जाइए.
सर, बट आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया का फ्यूचर क्या है इंडिया में, सोशल मीडिया का फ्यूचर क्या है?
आप तो बहुत जबरदस्त लोग हो सब सोशल मीडिया वाले भाई लोग. मैं आपको बताऊं, बहुत सॉलिड फ्यूचर है. आपने कॉड कटर्स क्रिएट कर दिए हैं. कॉड कटर वो है जिन्होंने टीवी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है, और न केवल कॉड कटर, बट जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, इनको बोलते हैं कॉड नेवर्स. कॉड नेवर वो है जो जिन्होंने जिंदगी में कभी टीवी नहीं देखा पैदा होने के बाद से, वो सीधा मोबाइल पर ही आए हैं. सो आई थिंक सोशल मीडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहने वाला है आने वाले समय में. एक आपको ये बताएं रणबीर भाई, बहुत लंबी तैयारी करिए. आज कंटेंट आज के हिसाब से मत क्रिएट करिए. यू विल बी नोन फॉर ईयर्स टू कम. आज कंटेंट क्रिएट करते वक्त ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो क्रेडिबिलिटी बिल्ड करे आपके लिए जिंदगी भर के लिए. आज वो गलती ना करें जिसके लिए 10 साल बाद पछताना हो. सोशल मीडिया में अगर आपको स्टेबल रहना है, कॉन्टेंट इज नॉट किंग. यू हर्ड कॉन्टेंट इज किंग? नो सर, कॉन्टेंट इज किंगडम. वो राजा नहीं है, साम्राज्य है. सो सोशल मीडिया इज गोइंग टू बी देयर फॉर वेरी लॉन्ग नाउ.
सो आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो, कंटेंट इज किंगडम, कैन यू एक्सप्लेन इट डीपर?
कंटेंट साम्राज्य है, सब कुछ है इस समय। राजा अकेला होता था, शासन करता था। इस समय राजा के साथ जो प्रजा है वो भी कंटेंट क्रिएट कर रही है। अगर ऐसा कंटेंट क्रिएट कर दिया जिसमें यूजर इन्वॉल्व हो गया, जिसको यूजीसी बोलते हैं, यूजर जनरेटेड कॉन्टेंट, अगर वो साम्राज्य क्रिएट कर दिया, फेसबुक इज वॉट, इट्स कॉन्टेंट। Everybody, any great platform is content. How do you engage your consumer to become partners with you in creating that world-class content? अब एक बात बताएं सर, एक बात आप मुझे बताओ रणबीर भाई, YouTube चैनल आपने कहीं सब्सक्राइब किए होंगे, राइट?
यस सर।
हो सकता है आपने 20, 25, 50 चैनल सब्सक्राइब कर लिए हों आज तक, लेकिन आप देखते कितने लोगों का वीडियो हर बार वापस जाके, जिनके आपने सारे वीडियो देखे होंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 के?
यस सर।
कितने के आप खुद बताओ मेरे को।
नहीं, कुछ 4-5 ही है।
4-5 ही हैं। आंसर बड़ा सिंपल है। टेलीविजन पे भी आप जाओ, उसमें फेवरेट चैनल होते हैं। टोटल 1250 एक्टिव चैनल टेलीविजन पे आते हैं। फेवरेट चैनल रिमोट में कितने दिखाता है वो? 10, राइट?
10
दिखाता है। आप भी जब टीवी देखते हो जाके, कितने चैनल्स पे टीवी देखते हो, ज्यादा से ज्यादा कितने चैनल एक्सप्लोर करते हो टेलीविजन पे जो आपके फेवरेट है? 4-5-7-10?
यस सर।
इससे ज्यादा तो नहीं है। इसी में आंसर है, इसी बात में आंसर छुपा हुआ है कि आंसर इस समय यह है कि लोग कुछ भी हो, कितने लोग कंटेंट क्रिएटर आ जाएं, यूट्यूब पे एंट्री बैरियर नहीं है। जिसका मन करे यूट्यूब चैनल चालू कर दे, पर चलता वही है जिसके कंटेंट में दम हो। आगे वही जाएगा जिसके कंटेंट में दम हो। इसीलिए कंटेंट साम्राज्य है इस समय। तो आप देखिए, कई बार लोग कहते हैं, मैं एक बार एक सिंगापुर में एक बड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम में गया था, उधर इंडिया के बहुत ट्रेनर आए हुए थे, तो मेरे साथ मेरा एक पार्टनर भी था। वो सब मुझसे पूछ रहे थे, यार डॉक्टर बिंद्रा ऐसा क्या कंटेंट क्रिएट करते हो तुम्हारे पास इतने सब्सक्राइबर आ गए? तो मेरे पार्टनर ने उनको ऐसा थोड़ा मतलब मजाक बनाने के लिए चुपचाप बोला, इनको सर ऐसा करते हैं अपने थोड़ा इनको घुमा देते हैं। मैं बोला क्या घुमाओगे? वो अचानक उनको बोला, हमने लंदन में एक एजेंसी हायर करी है, वो हमारा सब्सक्राइबर बढ़ा रही है। मैं कहा तूने ऐसा क्यों बोला इसको? तो बोला कि सबको लंदन भागने दो, वहीं घूमते रह जाएंगे कि कौन सी एजेंसी है इनके पास में। द रियल आंसर इज कि कोई एजेंसी आपको हेल्प नहीं कर सकता। रियल आंसर इज आपका कॉन्टेंट ही आपको हेल्प करेगा, कंज्यूमर तभी वापस आएगा। लॉयल्टी बियॉन्ड लॉजिक क्रिएट करना पड़ेगा।
सर कंटेंट की बात आई तो एक्चुअली हैव बर्निंग क्वेश्चंस फॉर यू, क्योंकि मैं अभी आई थिंक जेन्यूनली कुछ 3-4 साल से आपका कंटेंट देख रहा हूँ, और आई जस्ट रियली वांट टू नो कि अपने यूट्यूब पर आपकी ये जो मिशन है आपकी ऑफ एडुकेटिंग पीपल, ऑफ स्प्रेडिंग बिजनेस नॉलेज, आपने डिसीजन कभी ली कि you know, अभी यूट्यूब से मुझे अपना BadaBusiness.com का ब्रांड बढ़ाना है? लाइक When did this YouTube factor enter your life?
देखिए YouTube ना मैंने शुरू तो 2013 दिसंबर 2014 में कर दिया था। आई वॉज वेरी स्लो। लेटर ऑन 2018 में आई गॉट एक्टिव इन YouTube। लेकिन आपने पूछा कि तब डिसीजन क्यों लिया, क्या वॉट मेड दैट डिसीजन एक्सेट्रा। मैं उन दिनों कॉर्पोरेट्स के लिए काम किया करता था, तो सारे बड़े ब्रांड्स के साथ मैं जाके अप्रोच करता था, उनका बड़ा प्रोजेक्ट लेके आता था। मुझे याद है मारुति का उन दिनों 30 करोड़ का एनुअल ट्रेनिंग बजट हुआ करता था। तो मैंने सोचा कि भाई इस तरह की अपने को 10-20-50 कंपनी पकड़नी है जिसका 30 करोड़ का बजट है, उसमें से 1/3 बजट मुझको मिल जाए, 10 करोड़ का काम यहाँ मिल जाए। अल्टीमेटली अगर मैंने 100 कंपनी पकड़ ली तो 1000 करोड़ का मेरा टॉप लाइन हो जाएगा, और मुझे इसी तरह काम करना चाहिए कॉर्पोरेट्स में। उनके लिए मैंने थोड़ी किताबें लिखी और थोड़े 5-10 यूट्यूब के वीडियोज़ बनाए इंग्लिश में, उनको वीडियो दिखा देते थे और काम हो जाता था। तो बेसिकली अपना इतना ही ऑब्जेक्टिव था कि भाई हम लोग कॉर्पोरेट्स के साथ ऐसे ही काम करते रहे। बट अल्टीमेटली मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि कॉर्पोरेट्स के लिए काम करने वाले बहुत लोग थे। जो सबसे बड़ा गैप था एडटेक कंपनीज में, अगर आप इंडिया में देखें, मैं थोड़ा आपको पिक्चर समझाता हूँ, बड़ा पिक्चर देखिए। इस समय थोड़ा बाहर आते हैं इस पॉडकास्ट से और देखते हैं पूरे इंडिया को। इंडिया में जो टॉप कॉर्पोरेट्स हैं बिल्कुल, उनके लिए एक्सेंचर बैठा है, प्राइस वाटर हाउस कूपर बैठा है, KPMG है, अर्नस्ट एंड यंग है, डेलॉइट है, मर्सर है, सारे टॉप कंसल्टिंग कंपनीज हैं। जो नीचे मजदूर लोग हैं उनके लिए आप देखते हैं कि स्किल डेवलपमेंट के कई प्रोग्राम्स चालू हो गए, उनको स्किल सिखाया जा रहा है मजदूरों को। बीच में जो बचा हुआ देश है उसमें बच्चों के लिए तो बायजूस, वेदांतु, सिंपली लर्नर, जितने भी बाकी ऐप्स आ गए बहुत सारे, ये सब सिखा रहे हैं बच्चों को। स्कूल की पढ़ाई करा दिया, कॉलेज की एंट्रेंस की एग्जामिनेशन की तैयारी करा दिया। बचा हुआ सारा देश जहाँ 35-40 करोड़ लोग थे हमारे देश में, वो ऐसे MBA कॉलेजेस में जा रहे हैं जहाँ स्ट्रगल बहुत ज़्यादा था। मैंने महसूस किया कि ये गैप बहुत बड़ा है और इस गैप में कोई मदद करने वाला नहीं है। प्रॉब्लम पता है कहाँ है? प्रॉब्लम पूरे के पूरे बेसिक मॉडल के ऊपर था। अब बेसिक मॉडल क्या है आप समझिए कि जो एजुकेशन सिस्टम था वहाँ से दिक्कत आ रही थी। अगर मैं समझूं कि K-12 के लिए, K-12 बहुत बढ़ चुका था, इसमें बायजूस, अपग्रेड, कोर्सेरा बहुत काम कर लिया था, लेकिन वो इंग्लिश में हो रहा था। अब हिंदी में काम करने वाले और खास तौर से वो मैनेजमेंट प्रोग्राम्स को बिल्ड करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस थी नहीं। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस बहुत सारे हैं हमारे देश में, काफ़ी सारे हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, पर वो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पा रहे। जब जॉब लगती है तो दिक्कत आती है। तो अभी समझिए कि रियल टाइम एक्सपीरियंस नहीं मिल पा रहा था कि कॉर्पोरेट में चाहिए क्या। कन्वेंशनल क्लासरूम बेस्ड थ्योरेटिकल अप्रोच थी, अंडर एम्प्लॉयमेंट हुए जा रहा था। MBA करने के बाद 20 लाख रुपया लेने के बाद उसको बेचारे को 20,000 रुपये की तनख्वाह नहीं मिल रही थी 20 लाख के कर्जे के बाद। कॉम्पिटेंट फैकल्टीज नहीं थी। तो ये सारी जब समस्या थी, देखिए इंसान को रोटी कपड़ा और मकान के अलावा सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ी जरूरत थी वो शिक्षा की थी। SOCHM की हमने रिपोर्ट पढ़ी कि 93% ग्रेजुएट्स इस समय अनएम्प्लॉयबल हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमने पूरे मॉडल को चेंज किया, जहाँ ज़रूरत थी हम वहाँ पे एंटर किए, क्योंकि धनी लोगों के लिए तो धनी कंसल्टेंट अवेलेबल थे। अच्छा, अब गरीब आदमी पैसा देगा नहीं, तो उसके लिए हमने कहा फ्री वीडियो बनाते हैं, जिसको ज़्यादा नॉलेज चाहिए, जिसके पास थोड़ा पैसा है खर्च करने के लिए, फ्री में सब देख लें, थोड़े बहुत लोग पैसा दे करके और डिटेल में सीख लें, हैंड होल्डिंग करा लें। तो हमने सोचा कि भाई सीरियस रहेंगे, आलतू फालतू कंटेंट बिल्कुल नहीं बनाएंगे। तो वहाँ से हमने देखा कि जब बेचारे MBA करने के बाद 147% इंक्रीज हो गया लोन ना पे करना, जो बच्चा लोन लेके करता है ना MBA, लोन नहीं पे कर पा रहा है। ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लीन मैनेजमेंट सब बढ़ता चला जा रहा था। तो यहीं से फिर हमने उस मॉडल को बनाया। हमने देखा इंडिया में यंग एज है, इस समय यूथ है इंडिया में 26 साल से कम, 60 करोड़ की जनता इंडिया में, 120 करोड़ में से 26 साल से कम उम्र की है। और वहीं से हमने देखा कि भाई अब कंपनीज को बात समझ आ गई कि ये डिग्री तो खाली एक धंधा है, एक बिजनेस है। तो गूगल, अर्नेस्ट यंग, एप्पल, स्टारबक्स, IBM, बैंक ऑफ अमेरिका, ये सब लोगों ने इस समय बिना डिग्री के भी हायरिंग शुरू कर दी कि भाई वरना कॉलेज में क्या हो रहा है, अटेंडेंस चाहिए उनको ताकि उनको डिग्री मिल जाए, डीबार ना हो जाए अटेंडेंस के चक्कर में। आपने भी कॉलेज किया होगा तो आप भी जाते होगे अटेंडेंस के चक्कर में, डीबार ना हो जाए, बुरा नहीं मानना, सबके साथ मेरे साथ भी ऐसा होता था। तो हमने देखा कि भाई हार्वर्ड 80% केस स्टडी करा रहा है, स्टैनफोर्ड 40% केस स्टडी करा रहा है, वॉटन 40% करा रहा है, सो व्हाई डोंट वी पिक अप द बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो वहीं से हमने यूट्यूब चैनल में हिंदी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और हिंदी के कंटेंट में हम एंटर कर गए और वहाँ से फिर बिल्ड किया और उसी को स्केल करते चले गए। और फिर सस्टेनेबल मॉडल बनाने के लिए, इतना खर्चा उठाने के लिए देशभर में हम कर रहे हैं इतने एनिमेटेड वीडियोस। देखिए अगर बिजनेस करना है उसको, वो सीरियस है, थोड़ा बहुत भी कमा रहा है तो हम नहीं कमा रहा तो हम उसको लोन दिला देते हैं ताकि हमारा कोर्स अटेंड कर ले। इमेजिन करिए ना, 2 साल की फीस अगर 18,000 रुपये की एक स्टूडेंट की, तो और उसमें भी उसको लोन मिल जाता है और वहाँ पे भी मेरे साथ में देश भर के सारे बिलेनियर सिखा रहे हैं, टॉप लीडर सिखा रहे हैं। अब मेरा ओयो के रितेश अग्रवाल के साथ में कंटेंट क्रिएशन होने वाला है अपने, 2-4 दिन में हम कंटिन्यूस उनके साथ काम करेंगे और वो मेरे साथ में बैठ करके सीधा इनटू कैमरा बहुत सारे वीडियोस बनाने वाले हैं। आचार्य बालकृष्ण, बाबा रामदेव, हमने ऐसे कई सारे लोग लिए। मेरे को प्रोफेसर वो रखना ही नहीं है जिसकी 25-30 हज़ार रुपये महीना तनख्वाह हो, जो आम कॉलेजेस में हो रहा है। मेरे को वो मिथ ब्रेक करना था। वहां से हमने स्ट्रॉन्ग कंटेंट लाके दिया। हमने ऐसे लोगों को नहीं लाया जो ऐसे कोई भी आके कुछ सिखा दे और बोल दे, रियल वैल्यू दे सके आप, रियल जेन्युइन वैल्यू, कि आदमी आए और कहे यार मैंने 18 लाख की MBA करने की जगह 18,000 रुपए का एक कोर्स कर लिया, मेरी जिंदगी बन गई है। और उसको जब सर्टिफिकेट मिलेगा तो ये अरबपतियों के हाथ से साइंड सर्टिफिकेट मिलेगा, रेज्यूमे में उसकी ताकत आ जाएगी, कहीं खड़ा होगा तो बात कर सकेगा वो।
सर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में यूनिट्स कौन से हैं? अकॉर्डिंग टू मी आई फील कि आपका एक कंटेंट यूनिट है जिसमें सब यूनिट्स होंगे, रिसर्च, कैमरा, एडिटिंग टीम,
बहुत सारे यूनिट्स हैं, बहुत सारे यूनिट्स हैं।
आप जल्दी से एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि आई फील देयर इज अ लॉट ऑफ एंबिशियस यूट्यूबर्स।
बहुत सारे यूनिट्स हैं, देखिए हमारे चैनल पार्टनर्स हैं, ब्रांचेस हैं इंडिया भर में। हमने IBC बनाया, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, तो उसको लीड करने के लिए हमारे को लीडरशिप चाहिए। तो जिन लोगों को चैनल, फ्रेंचाइज, ये सब मैनेज करना आता है, तो हमने एयरटेल से, लावा से, ओला से, जगह जगह से जो चैनल हैंडल करते हैं उसके लीडर्स को लेके आए, वो हैंडल करते हैं। फिर सेल्स में हमने टाइम्स ऑफ इंडिया का, जैसे मैंने बताया, हमारा जो मैडम है हमारे यहाँ देखती हैं, वो वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट थी। ऐसे ही हमने प्रोडक्ट और कंटेंट एक टीम है जो प्रोडक्ट बनाती है, टेक्नोलॉजी एक टीम है, टेक्नोलॉजी पे बहुत काम कर रहे हैं इस समय। आपको याद होगा पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड जब हमने बनाया था तो उस समय मेरी ऐप क्रैश कर गई थी मॉर्निंग में। हमने तैयारी करी थी 10 लाख लोगों की, 5 लाख लोगों की आएंगे हमारी ऐप पे, आ गए 15 लाख लोग, हमारी ऐप थोड़ी हिल गई, गड़बड़ हो गई। तो मैं इसको खैर बुरा नहीं मानता, भगवान की कृपा ही मानता हूँ कि भाई ये भी एक अपने आप में एक क्रेडिबिलिटी का साइन होता है कि भाई पतंजलि की भी ऐप क्रैश कर गई थी, फ्लिपकार्ट भी कर गई थी, तो हमारी भी कर सकती है। पर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी टीम है, ऑपरेशंस के अंदर टीम है, फाइनेंशियल बजटिंग एनालिसिस की टीम है, स्ट्रैटेजी की टीम है, इसके अलावा हमारे पास में स्ट्रैटेजिक अलायंसिस की टीम है, इसके अलावा बहुत बड़ी जो इंपॉर्टेंट है कंटेंट आप बात कर ही चुके हो, इंफ्रा की टीम होती है, सर्विस की टीम है, इतने कस्टमर खरीद चुके हैं प्रोडक्ट तो उनको सर्विस देनी है, उनको हैंड होल्डिंग क्रिएट करा के देना है आपको, तो डिपार्टमेंट्स बहुत सारे हैं। वीडियो में भी एनिमेशन अलग है, वीडियो क्रिएशन अलग है, जो वीडियो विजुलाइजर्स हैं वो अलग हैं, एडिटर्स अलग हैं, कैमरा की अपनी प्रोडक्शन प्री प्रोडक्शन यूनिट अपनी अलग रहती है, टेक्नोलॉजी के अंदर भी फिर अलग अलग फंक्शंस हैं, प्रोडक्ट में कंटेंट अलग होता है, प्रोडक्ट में टेक्नोलॉजी अलग होती है, तो बहुत सारे फंक्शंस हैं। फाइनेंस अपना काम करता है, एचआर अपना काम करता है, ऑपरेशंस अपना काम करता है, लीडरशिप मैंने बहुत स्ट्रांग रखी, आई लव टू इन्वेस्ट इन मैन पावर। मैं तो ऑफिस नहीं जाता हूँ, मैं तो 3-3 महीना ऑफिस नहीं जाता, लेकिन मैंने अपना एक सीईओज ऑफिस बनाया है। सीईओज ऑफिस क्या है, जो मेरे साथ काम करता है, मेरे पास 5 लीडर्स हैं सीईओज ऑफिस में, वो हमारे अलग अलग फंक्शंस को हैंडल करते हैं, मेरे साथ रहते हैं मेरे फार्म हाउस पे, और हम मैं 5 लोगों की यूनिट की मदद से पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रन करता हूं और यहीं से चलाता हूं, और फिर अपना साथ में जो बड़े इनिशिएटिव्स हैं उस पे काम करता हूं। इससे मैं आपको अच्छा लगेगा जान के हार्वर्ड भी हमारे ऊपर केस स्टडी लिख रहा है, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग कि अगर कोई अगर हार्वर्ड भी एक इंडियन एडटेक प्लेटफॉर्म पे एक लंबी चौड़ी केस स्टडी बना रहा है, सो आई थिंक दैट्स द क्रेडिबिलिटी वी वांटेड टू ब्रिंग इन।
So I think you've established that, and more than anything, you've also given us a blueprint. Like I feel a lot of young YouTubers, especially jo infotainment space mein, jinko edutech mein enter karna hai, they follow your blueprint.
जी जी.
So sir, specifically talking about content,
if follow your blueprint, तो आपने बिल्कुल ठीक बोला, क्योंकि हम category creator हैं। रणबीर भाई, हमको मुश्किल भी बहुत आई, मुश्किल इसलिए आई क्योंकि मेरे पास reference point कोई नहीं था। आप थोड़ा एक बात समझना, मेरी रेफरेंस पॉइंट कोई नहीं है मेरे पास में, ऐसा नहीं कि मैं इसको देख करके अपना चालू कर दूं। लावा मोबाइल शाओमी ओप्पो वीवो को देख करके जियोनी को देख के अपना चालू कर सकता है, लेकिन मेरे पास कोई आसपास रेफरेंस पॉइंट नहीं है। मुझको पहली बार करना है, फर्स्ट टाइम राइट करना है। अगर मैं कोई गलती करूंगा और मेरा कॉम्पिटिटर आदमी बाद में आके ठीक करके आगे निकल जाएगा, तो वो तो फिर एक बड़ा बहुत बड़ा फेलियर प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दूंगा मैं। मेरे को पहली बार करना है और पहली बार में ठीक करना है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा, इसको इसका एक सीक्रेट है कि अभी कैसे कर सकते हैं, वो भी आप जानना चाहोगे?
यस सर।
सीक्रेट ये है कि कंज्यूमर बताएगा आपको।
ओके।
कस्टमर सिग्नल देता है, और जैसे ही आम ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कस्टमर सिग्नल देता है और कमजोर ऑर्गेनाइजेशन उसको इग्नोर कर देता है। जैसे ही आप कस्टमर को सिग्नल दे, तो उसको कैप्चर करने का प्लेटफॉर्म क्रिएट करो। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना आज हमने एनिमेशन डाला तो हमारा कॉम्पिटिटर एनिमेशन डालेगा, हमने फ्रेंचाइजी बनाना शुरू किया तो हमारा कॉम्पिटिटर फ्रेंचाइजी बनाना शुरू करेगा, हमने आईबीसी किया तो वो भी वो कर देगा, हम दूसरे स्पीकर्स लेकर के आए तो वो भी वो लेके आएंगे। वो तो बड़ा सिंपल है, जो विवेक बिंद्रा कर रहे हैं बस वो करते चले जाओ, अपने सफलता मिल जाएगा। सो इनोवेट इज गुड, क्योंकि हम एक इंडस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं, इनोवेट इज गुड क्योंकि हम एक इंडस्ट्री को और मैच्योर करने में मदद कर रहे हैं और उसका कॉर्पोरेटाइजेशन कर रहे हैं एक व्यापारी को ट्रेनिंग करके। आज अच्छी चीज क्या है रणबीर भाई, अब हमारे पे ना लोग ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं कि यार ये और ट्रेनर्स की तरह नहीं है, इसके साथ इतने अरबपति जुड़े हैं तो उनको वो अपना ड्यू डिलीजेंस करके जुड़ते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब मैं आज बाबा रामदेव आचार्य बालकृष्ण से लेकर के किसी प्राइवेट एमएनसी से लेकर के इंडियन सबसे बड़े बैंक से लेकर आज एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर, एचडीएफसी के वाइस चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर, जब मैं इन सबको प्लेटफॉर्म पर लेकर के आता हूँ, मोहनदास पाई को प्लेटफॉर्म पर लाता हूँ, किरण मजुमदार शॉ जो $5 बिलियन का बिजनेस कर रही हैं, जिनको दुनिया की 25 सबसे पावरफुल महिलाओं में से और इंडिया की 3 सबसे पावरफुल महिलाओं में से माना जाता है, जब ये सब लोग हमारे प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो पहले ड्यू डिलीजेंस कर लेते हैं कि यार ये कोई यूट्यूबर है कि एक सॉलिड सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या कर रहे हैं, कि क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या काम करते हैं। हर इंडस्ट्री का बिलियनियर अगर मेरे साथ आज हाथ मिलाता है और मेरे साथ में सिखाने के लिए तैयार होता है तो वो जानता है। अब वो क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। हम एक आम यूट्यूबर की तरह काम नहीं करते कि भाई क्योंकि अगर ऐसा ही अरे कोई लड़का यूट्यूबर है भाई ऐसा वीडियो बना रहा है, लेकिन ये बहुत चैलेंज था कि पहली बार करें, सब कुछ सही करें, आसपास कोई रेफरेंस नहीं है, फिर भी लीड कर दें पूरी इंडस्ट्री को।
एंड इट्स ऑल थ्रू द पावर ऑफ कॉन्टेंट। आई फील कि आपका पूरा फोकस यूट्यूब गेम में इट्स ऑन कॉन्टेंट, इट्स ऑन योर रिसर्च, इट्स ऑन दैट वैल्यू एड।
ना, थोड़ा गलती है इसमें। ना, नॉट ऑल कॉन्टेंट। कॉन्टेंट कोई भी बनाएगा, इट्स ऑल कंज्यूमर। ये रूल में थोड़ा चेंज है, बारीकी है, बहुत हल्की सी बारीकी है। जितने लोग इस बात को पकड़ लेंगे ना, वो बहुत तेज जंप मारेंगे। कंटेंट सब कुछ नहीं है, कंज्यूमर सब कुछ है। पहले कंज्यूमर, फिर उसकी साइकोलॉजी के हिसाब से कंटेंट। कंटेंट कम्स सेकंड, कंज्यूमर कम्स फर्स्ट। कंज्यूमर की अंडरस्टैंडिंग, कौन इनिशिएटर, बायर, इन्फ्लुएंसर, डिसाइडर, कंज्यूमर एक्चुअली क्या करता है, उसको चाहिए क्या, वो क्या रिपीट करेगा। सो इफ योर कस्टमर लाइक्स इट, यू प्लीज रिपीट इट, दैट्स द गोल्डन स्टेटमेंट। सो कीप ऑन कंटिन्यूअसली कीप अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर एनालिटिक्स, कि कस्टमर पसंद क्या करता है, फिर जाइए वापस, फिर ब्रेनस्टॉर्म करिए, फिर कंटेंट क्रिएट करिए।
ब्यूटीफुल सर, अभी मैं थोड़ा सा पर्सनल टैंजेंट पर जाना चाहता हूँ। आई जस्ट वांट टू आस्क यू यू स्पेसिफिकली सर, आई फील कि आप एक लाइफ लॉन्ग लर्नर हो, नोइंग यू, नोइंग योर स्पिरिचुअल बैकग्राउंड, तो एट दिस स्टेज ऑफ योर लाइफ आपके लर्निंग सोर्सेज क्या है? कैन यू गिव मी थ्री लर्निंग सोर्सेज ऑफ योर्स?
सबसे पहला मेरा लर्निंग सोर्स हमेशा सबको मालूम है, वो है वो शास्त्र जहाँ से मैंने सीखा। पर आपने पूछा आज करंटली और क्या लर्निंग सोर्सेज हैं, और लर्निंग सोर्सेज हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स।
ओके,
मैंने ऑर्गेनाइजेशन में जब लीडर्स को हायर करता हूँ ना, मैं सबसे ज़्यादा उनसे सीखता हूँ। जो मेरी टीम है, मैं उनको, वो हमारे यहाँ एम्प्लॉयज नहीं है, मैंने उनको ईसॉप्स दिए हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, वो मेरे शेयर होल्डर्स हैं। हम आज भी हायरिंग, कोविड क्राइसिस के दौरान भी हायरिंग बंद नहीं करी है, हमने एक भी जगह सैलरी कट नहीं किया है, एक भी जगह हमने कहीं पे भी कोई कट डाउन नहीं किया, कोई भी हमने एट्रिशन क्रिएट नहीं किया, किसी को निकाला नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, इंस्टेड हम इस समय सैलरी हाइक्स भी दे रहे हैं, शेयर्स भी दे रहे हैं, सीएक्सओ लेवल से लेके फ्रेशर लेवल तक सारी हायरिंग हो रही है। एक ही रूल है सर हमारे यहाँ, एक कैटेगरी एम्प्लॉय चाहिए, एक कैटेगरी दिमाग में घुसा दिया सारी टीम के, टीम एक कैटेगरी बिल्ड करेंगे। और आज मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इतने सीक्रेट किसी चैनल पे नहीं दिए, मैं पहली बार आपके चैनल पे आज इतनी चीज़ें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में शेयर कर रहा हूँ। पर्सनल तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ पूछा, पर मैं सीखता हूँ अपनी लीडरशिप से, और वो भी मेरे को इस बात के लिए बहुत पसंद करते हैं कि यार विवेक सर आपके साथ ना चक्कर क्या, आपकी सीखने की स्पीड बहुत तेज है। मेरा ना, मेरे को आमिर खान की एक पिक्चर आई थी, मेरे को नाम याद नहीं है वो क्या नाम है, उसमें आता था किसी दूसरे लोक से वो, और ऐसे करके, हाँ ऐसा करके हाथ पकड़ता था और सब सीख जाता था। मेरे को लगा यार ये बहुत बढ़िया आइडिया है, ऐसा करके सामने वाले का हाथ पकड़ के उसकी भाषा सीखता था। मैंने कहा मेरे को भी ऐसा ही करना है, ऐसा सामने वाले के साथ बैठो, उसको जितना आता वो सब सीख जाओ फटाफट से। So I am a very good listener. While people think that I am a good speaker on YouTube because they know only one part of myself, but then there's other part also which I am a very deep, sincere listener and I understand people very well. तो मैं वहाँ से बहुत सीखता हूँ। दूसरी चीज़ सीखने के लिए मैं फिर से वापस बताता हूँ, अपने कंज्यूमर से सीखता हूँ। और तीसरी चीज़ okay. शास्त्रों से सीखता हूँ। एक रूल बना लिया, कॉम्पिटिशन से कभी नहीं सीखता मैं।
ओके okay.
क्योंकि कॉम्पिटिशन से ना सीखने का मेरा कारण ये है कि अगर कंपटीशन को देखूंगा तो मैं गलती से वही रिपीट कर बैठूंगा जो वो कर रहे हैं और जिसके मैं सख्त खिलाफ हूं। कंपटीशन जो कर रहा है वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं करना है, मुझको वो करना है जो कंज्यूमर बोल रहा है। तो कंज्यूमर से मैं रिक्वायरमेंट लेके आता हूं और अपनी लीडरशिप से सीखता हूं उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कैसे करें, और शास्त्रों के दृष्टिकोण से उसको देख करके अप्रूव करता हूं। दैट्स देयर आर दीज थ्री पिलर्स।
ब्यूटीफुल सर। सर पर जेन्युइन क्वेश्चन, आई नो यू डोंट कंसीडर योरसेल्फ अ यूट्यूबर, That's why I'm asking you, आपका कॉम्पिटिशन है कौन? Like, who are you competing with?
नहीं नहीं, मैं फिर बोला कि आपको कॉम्पिटिशन में हम बिलीव नहीं करते, या तो हम कोलैबोरेशन करेंगे या कंज्यूमर इनसाइट्स जनरेट करेंगे। जैसे मैंने आपको बता दिया इसका आंसर इस क्वेश्चन का बातों बातों में कि हम कैटेगरी क्रिएटर मानते हैं अपने आप को, कि हमने कैटेगरी क्रिएट करी पहली बार। अब इसमें कॉम्पिटिशन, कई बार मुझसे एक अखबार वाले ने पूछा, अभी एक न्यूज़ चैनल ने, कि आपने MBA को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो, आप देश भर में जितने कॉलेजेस हैं उनको बंद करा दोगे क्योंकि आपने सारी मैनेजमेंट की पढ़ाई आज 18,000 रुपये में दे दी, वो 25-30 लाख रुपए, 40 लाख, 50 लाख रुपए चार्ज करते हैं, तो आपने इतनी अफोर्डेबल कर दी कि अब तो कोई कॉलेज लोग जाएंगे नहीं वैसे भी, और वैसे भी बंद हो गया। आपने कोविड के दौरान आपने बहुत कंटेंट दे दिया लोगों को। तो मेरा मानना है कि ये गलत अंडरस्टैंडिंग है, मैं यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के साथ भी कम्पीट नहीं कर रहा हूं, उनके साथ मैं कोलैबोरेट कर रहा हूं। मैंने ऐसा मॉडल बना दिया, आज आपको रणबीर भाई आपके चैनल से मैं बताता हूं, आपको जान के अच्छा लगेगा, बहुत सारे कॉलेजेस ने हमारे साथ पार्टनरशिप कर लिए, उनको समझ में आ गया है कि उनके पास वो कंटेंट नहीं है और हमारा वो पहले पेड कंटेंट आकर के देखते हैं कि हमने क्या क्या कंटेंट क्रिएट किया, किस तरह के हमने सब्जेक्ट्स को कवर किया है। मैनेजमेंट में हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर किए हैं, बहुत अमेजिंग सब्जेक्ट्स कवर किए हैं। तो ये सब्जेक्ट्स हमने सारे लिए। मैं अब इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट ऑल दिस सब्जेक्ट्स, तो मैं क्विकली आपको बताता हूँ कि हमने क्या किया, हमने उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के साथ में पार्टनरशिप कर ली और हम उनको कंटेंट क्रिएट करके दे रहे हैं और वो अपने प्लेटफॉर्म पे हमारी ऐप पावर्ड बाय बड़ा बिजनेस, नाम उनकी यूनिवर्सिटी या उनके कॉलेज का। और उस तरह से मेरी पहली पार्टनरशिप मथुरा में एक यूनिवर्सिटी के साथ हुई थी, GLA यूनिवर्सिटी। और फिर वहाँ से ये बढ़ता चला गया कि भाई हमारे प्रोफेसर्स उनके यहाँ जाते भी हैं, उनके यूनिवर्सिटी भी जाएंगे, वहाँ पर भी जा करके लेक्चर देंगे फिजिकली भी, वो तो पोस्ट कोरोना क्राइसिस होएगा, लेकिन डिजिटली उससे क्या हुआ, यूनिवर्सिटी को बहुत फायदा, उनकी नैक रेटिंग इंप्रूव हो जाती है। नैक रेटिंग बेसिकली आप शायद समझते हो, पर आपके सारे स्टूडेंट समझते होंगे जो पार्टिसिपेंट हैं, जो यंगस्टर्स हैं, कॉलेज को एक नैक रेटिंग मिलती है और जिसके बेसिस पे उनकी क्रेडिबिलिटी और बढ़ती है। तो जब हमारे प्रोफेसर उनके साथ पार्टनर करते हैं तो उनकी नैक रेटिंग बढ़ती है, नया कॉन्टेंट उनको मिलता है, हम डिजिटल सपोर्ट क्रिएट करते हैं उनकी फिजिकल पढ़ाई के लिए, तो हम उनके नाम पे एक ऐप बना के देते हैं, इससे हो गया पार्टनरशिप। तो हम लोग कहीं पे भी कंपटीशन में बिलीव नहीं करते, या तो कोलैबोरेशन करेंगे या पूरा मार्केट को बीट कर देंगे।
Crazy. Love that mentality, sir. Sir, one more question I have for you, the man, not the businessman.
Ji.
Sir, kyunki aap ek businessman ho, kyunki aap ek learner ho, I feel ki learners analyze themselves.
Ji.
And that's why I'm asking you, sir, ki हर इंसान की कोई ना कोई वीकनेस होती है तो ऑन अ पर्सनल लेवल व्हाट डू यू फील इज योर वीकनेस
मेरी एक नहीं कई सारी वीकनेसेस हैं बहुत सारी हैं आप कौन सी वीकनेस जानना चाहेंगे मुझे मालूम नहीं है मैं कितनी सारी बता सकता हूँ मेरी वीकनेसेस पर मेरी एक वीकनेस है कि मैं फैमिली फ्रंट पर बहुत गलतियाँ करता रहा मैं अपनी फैमिली को उतना समय नहीं दे पाया क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे लिए कंट्री इज़ फर्स्ट और फैमिली इज़ सेकेंड तो वो मेरा एक वीकनेस भी है और मेरा एक स्ट्रेंथ भी है लेकिन मैं इसको अभी ज़रा वीकनेस में काउंट करूँगा कि मैं काफ़ी ऑफेंसेस कर गया एक तरह से अपनी फैमिली को समय ना देना परंतु मुझे लगा कि अगर मैं लार्जर इकोसिस्टम को समय दे रहा हूँ तो इसमें मैं देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कई बार देश के बॉर्डर पे खड़े होकर के लड़ना ही देश की सेवा नहीं है जो देश में अंदर लोग बैठे हैं उनके लिए लड़ना और उनको समय देना वो भी बहुत बड़ी सेवा है मेरा मैं इसको ऐसा इसलिए मानता हूँ क्योंकि देखिए मैं जितना कमाता हूँ इफ़ यू स्पीक टू एनी ऑफ माई लीडर्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन मेरी तनख्वाह मेरे ख्याल से सबसे कम लोगों में से होगी मेरी कंपनी में और मैं अपनी 90% पैसा जो मैं कमाता हूँ वो चैरिटी में डालने में बिलीव करता हूँ गरीबों को खाना खिलाना उनको पढ़ाना उनके लिए मदद करना सेवा करना सो पर्सनल टाइम आई गिव अ लॉट इन चैरिटी मैं तो ये मेरी स्ट्रेंथ है हालांकि परंतु वीकनेस ये रही कि मैं ज़्यादा समय सोसाइटी में रह गया और क्योंकि शायद मेरी फैमिली थी भी नहीं बचपन से तो मैं शायद फैमिली को उतना बिल्ड नहीं कर पाया रिश्तेदारों को उतना बिल्ड नहीं कर पाया क्योंकि वो पेन बहुत स्ट्रांग रहा बचपन में पर मुझे लगा कि फैमिली में सबको अगर खुश करने में लगा रहूं तो हर जगह कोई ना कोई नाराज़ फूफा मिल जाते हैं कुछ भी कर लो कोई नाराज़ मामा मिल जाते हैं कुछ भी कर लो तो वो आई थिंक आई थॉट वील सो दैट्स वन वीकनेस सेकेंड वीकनेस जो मैं मानता हूँ वो ये है कि मेरे को मैंने हेल्थ पे समय लगाने में काफ़ी डिले किया मैं अपने काम पे बहुत मिशन में लगा रहा हालांकि आई वॉज एन एथलीट परंतु अभी लॉकडाउन के दौरान मैंने समय लगाना शुरू किया है आज मैं मॉर्निंग में आई प्ले फुटबॉल फॉर 1 आवर मेरे साथ में मेरे घर पे काफ़ी स्टाफ है हमारे साथ में 2 ड्राइवर हैं 2 कुक हैं 2 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं 2 हेल्पर हैं गार्डनर है कैमरामैन वगैरह तो रहते ही हैं तो हम 12 लोग हैं और मेरे घर में बहुत बड़ा ग्राउंड है तो वहीं पर हम लोग रोज़ सुबह फुटबॉल खेलते हैं तो उससे मैंने फिटनेस पर फोकस शुरू किया इस वीकनेस को मैं ओवरकम कर रहा हूँ मेरे ख्याल है और भी कई वीकनेसेस होंगी जिनको मैं कंटिन्यूसली इंप्रूव करता ही रहूँगा क्योंकि मैं मानता हूँ अगर मैं परफेक्शन की स्टेज पे आ गया होता तो फिर शायद मैं भगवान के लोक में उनके साथ में आनंद ले रहा होता इस संसार में मैं आया इसका मतलब कमियाँ हैं तभी यहाँ पहुँचा
सर आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हो खुद के लिए क्या करते हो
फ्री टाइम रखता ही नहीं मैं कुछ भी फ्री
हो संडेज को क्या करते हो
शरीर
संडे
जिस दिन ये शरीर छोड़ेंगे उसके बाद फ्री होंगे
Amazing, sir. Sir, और I have one key question. This has come in from our Instagram comment section. तो अभी youth movement चल रही है जिसका नाम है NoFap, which basically is ब्रह्मचार्य. It's not letting go of your creative energy. Because you have practiced ब्रह्मचार्य in your youth, sir. तो can you just talk to us a little bit about your experiences with it? And experiences with celibacy? And has it given you some kind of I don't want to call it superpower but has it given you some superpower today
celibacy ke na do fayde hain material level pe bhi fayda hai which is physical level aur spiritual level pe to fayda hai hi aapko bahut bada dekhi pehli cheez celibacy ka sabse bada fayda kya hai aapka focus bahut amazing ho jata hai you attraction to distraction is over so what happens is jab aapka focus bahut bhayankar hai to aapko koi disturb nahi kar sakta hai दूसरा सेलिबेसी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या होता है ऊर्ध्वरेति योर सीमन हैज अ लॉट ऑफ पावर एंड सो मच सो दैट यू कैन प्रोक्रिएट एंड रिक्रिएट अ न्यू लाइफ यू कैन गिव बर्थ टू अ न्यू चाइल्ड एंड इफ यू कैन एक्चुअली सेव योर सीमन एंड स्टार्ट फ्लोइंग अपवर्ड्स अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा स्टार्ट नरिशिंग योर ब्रेन सेल्स इन सच अ वे दैट यू बिल्ड नो डाइट्री एम्युलेट कैन डू इट एंड प्लस यू ऑल्सो बिल्ड अनकॉमन इंटेलिजेंस एंड फोटोग्राफिक मेमोरी So what I feel is brahmacharya is needed until the age of 25 for sure. जो हमारे शास्त्रों में बताया गया 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ मैं आपको बताऊँ नो ग्रेटनेस यू कैन एवर बिल्ड वाइल रनिंग बिहाइंड वेमेन एंड सेटिस्फाइंग योर जेनिटल्स क्योंकि जिसका जेनिटल के सेटिस्फैक्शन की जो डिज़ायर है उसको कंट्रोल कर लिया ना तो फिर मेरे ख्याल है आपको बहुत चीज़ें वैसे भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, नहीं तो फोकस और एब्जॉर्प्शन नहीं आ सकता आपके गोल स्टेटमेंट में. वो जो एब्जॉर्प्शन चाहिए वो बड़ा बहुत क्रिटिकल चीज़ है मेरे ख्याल है. मैं बिकॉज ऑफ दी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड स्टेइंग इन गुरुकुल हैज एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट.
सर एज 25 के बाद क्या होता है, आप ये क्यों कह रहे हो?
उसके बाद सर गृहस्थ आश्रम है. गृहस्थ आश्रम इज एन ऑप्शन टू कम आउट ऑफ ब्रह्मचारी आश्रम एंड देर इज वेयर यू आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोक्रिएट अ न्यू चाइल्ड. सो देन यू आर नो मोर अ ब्रह्मचारी. यू कैन स्टिल प्रैक्टिस ब्रह्मचार्य इवन इन गृहस्थ लाइफ बाय रेगुलेटिंग योर सेक्सुअल लाइफ.
ओके, कैन यू एक्सप्लेन दैट लिटिल फर्दर, लाइक
व्हाई नॉट, जस्ट व्हाई नॉट. धर्म विरुद्ध कामो अस्मि. सो जो भी कामना है उसको धर्म के आप छतरी के नीचे प्रैक्टिस किया जाए. इसका अर्थ क्या हुआ? कीपिंग द रिलेशनशिप विद इन द फैमिली लाइफ, दैट्स वन. एंड प्लस नॉट सीइंग योर वाइफ एज अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई योर जेनिटल्स. सो बेसिकली योर पर्पज ऑफ हैविंग रिलेशनशिप विद हर इज टू एक्चुअली सर्व द सोसाइटी एंड फैमिली एंड द लॉर्ड, नॉट जस्ट टू एक्चुअली सेटिस्फाई योर डिजायर्स टू ऑफ योर जेनिटल्स. डोंट सी हर एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ माई सेंसेज, सी हर एज एन को कॉन्ट्रीब्यूटर इन द इकोसिस्टम.
So, but if you are letting go of your semen during married life, does it take away from your mental sharpness?
That's what I said. Regulation is required.
Okay. But what would count as regulation?
Discipline. Like, discipline. I would not be able to tell you how many times in a week or how many times in a day. I don't think that's the right answer. But I would say one has to regulate it. Because the purpose of life will bring regulation. Desire to regulate will not bring regulation. If you see, if I ask you a question... ऐसा करो रणबीर भाई, एक ना एक गुलाबी रंग का हाथी जिसकी पीले रंग की पूंछ हो उसके बारे में सोचना मत. कौन से रंग का हाथी?
गुलाबी रंग का हाथी पीले रंग की पूंछ,
उसके बारे में नहीं सोचना है. तो जैसे ही मैं ये बोलूंगा उसके बारे में नहीं सोचना, आप उसी के बारे में सोचोगे. सो इफ आई टेल यू डोंट थिंक अबाउट सेक्स, यू विल थिंक मोर अबाउट सेक्स. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, हैव अ हायर पर्पस एस्टैब्लिश्ड इन माइंडसेट.
सो क्योंकि हम सेलिबेसी की बातें कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की बातें कर रहे हैं, आई हैव टू आस्क यू अबाउट मेडिटेशन. वेस्ट में अभी मेडिटेशन का एक क्या बोलते हैं वेव चल रहा है, और इंडिया में ऑनेस्टली मेडिटेशन हैज़ बीन देयर फॉर सेंचुरीज. तो क्या आप भी मेडिटेट करते हैं, एंड व्हाट इज़ योर एडवाइस अबाउट मेडिटेशन टू द यूथ?
मैंने 2004 से मेडिटेशन शुरू किया था, तब से लेके आज तक. अनलेस आई कंप्लीट माई मेडिटेशन प्रैक्टिस इन द मॉर्निंग, आई डोंट टेक माई ब्रेकफास्ट. सो दैट्स व्हाट आई हैव स्टार्टेड. See, for me, meditation is simple. Mantra meditation is important. If you just close your eyes and you meditate on some light, etc., you might end up falling asleep. So, neend aa jayega aapko. So, what you need is to meditate on the sound vibration. You pick up any religion, every religion is promoting some kind of mantra meditation. Like, for example, Kalyug Keval Naam Adhara Sumri Sumri Nar Utri Apara. That's said in Granth Sahib. Ke Kalyug mein Keval Bhagwan ka naam hi adhar hai, Sumri Sumri, matlab simran kar karke Utri Apara. You get delivered from this material world. If you look at Christianity, out of their 10 commandments, they say, Thou shall chant the holy names of the Lord. Ke har ek ko Bhagwan ke divya naamon ka jap karna chahiye Hindi mein. If you look at Quran or Islam, they're actually chanting 99 different names of Allah while they're offering their prayers, while they're offering their namaz. Similarly, even in Sanatan Dharma, it is always talking about Harir Naam, Harir Naam, Harir Naam, Eva Kevalam, Kalo Nasti Eva, Nasti Eva, Nasti Eva Gatiranyatha. Ke Hari Ka Naam, Hari Ka Naam, Hari Ka Naam, Ye Ek Upaay Hai, Aur Koi Upaay Nahi Hai, Nahi Hai, Nahi Hai. Nasti Eva, Nasti Eva, Nasti Eva Gatiranyatha. So which simply means, ke chanting the holy names of the Lord is the right way. So sit down properly in the morning. You can chant the mantra, the right mantras. For example, I'll take one example. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So you pick up this Maha Mantra, take one round of beads, ek mala le lijiye, 108 man ke, ek ek karke usko pakadte jaiye, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Listen to the sound vibration very, very carefully. Speak it up, don't do it in mind only. Speak it up. तो कृष्ण ने भी बोला यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि भगवद गीता में, कि सभी यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ. सो डूइंग दिस जपा मेडिटेशन, जपा मीन्स चैंटिंग, चैंटिंग, स्पीकिंग इट आउट. सो व्हेन यू स्पीक द होली नेम ऑफ द लॉर्ड एंड यू मेडिटेट ऑन द, सो इन स्क्रिप्चर इट इज सेड दैट द नेम्स ऑफ द लॉर्ड एंड द लॉर्ड दे आर नॉन डिफरेंट. व्हेन यू स्पीकिंग द नेम ऑफ द लॉर्ड इट इज एज इफ यू आर एसोसिएटिंग विद द लॉर्ड बिकॉज दे आर नॉट मटीरियल नेम्स. कोई यहाँ से ताकत आती है, मेडिटेशन इज मस्ट, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और अगर कोई कर सकता है तो उसके पास दिव्य ताकत आती है, और वो जो दिव्य ताकत है, वो जो शक्ति है, वो उसको ड्राइव करने में कभी कोई इसको फिर हरा नहीं सकता ऐसे आदमी को।
सो मॉडर्न स्किल सेट के अकॉर्डिंग कैन यू एक्सप्लेन दिव्य ताकत, कि मॉडर्न स्किल सेट में आपको क्या एडवांटेजेस मिलते हैं?
दिव्य ताकत को मॉडर्न स्किल सेट के हिसाब से आप देख सकते हो, द बिलीफ सिस्टम, बिकॉज जो बिलीफ है ना वो आपसे अद्भुत कार्य करा देता है। अगर आप देखो बाबा दीप सिंह के बारे में, तो उनका ना बिलीफ क्या था कि उनको हरमंदर साहिब तक जाना था, जो हमारा अमृतसर में जो गुरुद्वारा है, और उनका गर्दन कटने के बाद हाथ में लेकर के तलवार दाएं हाथ में बाएं हाथ में गर्दन लेकर के लड़ते हुए चले गए। बिल्कुल बिलीफ से ना आप अद्भुत कार्य कर सकते हैं, अजीबोगरीब कार्य कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो ये जो राइट बिलीफ्स बिल्ड होना, इसमें भी बहुत डैमेजिंग बिलीफ भी बिल्ड हो सकते हैं, है कि नहीं? बिलीफ ऑफ स्वामी विवेकानंद एंड बिलीफ ऑफ अ टेररिस्ट आर कम्प्लीटली ऑपोजिट, बट बोथ ऑफ देम दे कैन गो टू एन एक्सट्रीम। सो बिल्डिंग राइट बिलीफ इज इम्पॉर्टेंट।
Sir, I personally feel ki one big gift of meditation in my own life was creativity. And creativity obviously I've applied to YouTube, writing, wagera. But a big portion of the creativity has gone into creating business products, creating monk entertainment, ya jo bhi, building a team. And I know for a fact that the same thing has happened in your life. Ki jo Divya Dagat aapko meditation se mili hai, aapne us creativity ko apne business mein bhi apply kiya.
Dhanyavaad.
Aur iske... genuinely so, like, and that creating something in business also applies to creating teams. That's why, sir, I want to ask you ki at this stage, you are 38 years old, to products jab aap bana rahe ho, jaise ki abhi badabusiness.com aapne ek banaya, wo basically ek product hai, to aapki thinking kya hoti hai? Can you like just explain how it's affected your product design?
Very nice, Ranbir bhai. Isme humne na hamari creativity ko na ek shape dena hai hame, और वो जो शेप है वो आएगी डायरेक्शन से, और डायरेक्शन कहाँ से आएगा? वो आएगा गोल से, और गोल क्या है? कंज्यूमर का बर्निंग प्रॉब्लम। तो हमने एक एक करके कस्टमर की प्रॉब्लम उठानी शुरू करी। हमने देखा कि उसको वर्किंग कैपिटल का बहुत प्रॉब्लम आता है, कैश नहीं रहता है उसके पास में, सीजनल बिजनेस में वो खत्म हो जाता है, उसके पास जो रिस्क है उसकी कॉस्ट को वो समझ नहीं पाता, बैंकरप्सी के खतरे हैं, क्रेडिटर सप्लायर इन्वेस्टर की टेंशन रहती है। तो हमने वर्किंग कैपिटल का कोर्स बनाया। हम देखते हैं कि उसको फाइनेंस की समझ ही नहीं है, उसको यही नहीं पता कि ग्रॉस प्रॉफिट इबिट्टा पैट क्या होता है बिजनेस के अंदर, वो बैंक लोन्स कैसे मैनेज करेगा, सरप्लस कैश कैसे देखेगा, फिक्स्ड एसेट करंट एसेट की समझ नहीं आती, फंस जाता है वो उसमें। तो हमने फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस कोर्स बनाया। प्रेजेंटेशन कैसे दे, इन्वेस्टर के पास जाऊं बात कैसे करूं, सेल्स प्रपोजल कैसे बनाऊं। तो हमने स्मार्ट प्रेजेंटेशन फॉर इन्वेस्टर कस्टमर एम्प्लॉय, इसको बोलते हैं स्पाइस, SPICE। ऐसे ही हमने देखा कि यार टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है, जिंदगी भर गल्ले पे बैठा हुआ कच्चे का धंधा कर रहा है। अगर एक छोटे दुकानदार को हमने टेक्नोलॉजी समझा दी बेसिक, तो वो एक दुकान से 100 दुकान पे पहुंच जाएगा बहुत तेजी से। तो हमने ERP का प्रोग्राम बनाया उसके लिए। नया स्टार्टअप आता है आपके पास बहुत, उसको $0 मार्केटिंग हमने सिखाया कि बिना पैसा खर्च किए आप मार्केटिंग कैसे करोगे, एक हाई कन्वर्जन वेबसाइट कैसे बनाते हो, ऑनलाइन विजिबिलिटी कैसे बिल्ड करते हो, एडवोकेसी रेट कैसे बढ़ाते हो, आप कस्टमर लाने की कॉस्ट कैसे कम करते हो, वायरल कंटेंट कैसे क्रिएट करते हो, लॉयल कस्टमर कैसे बनाते हो। फिर एक दिक्कत हमने देखी कि जो बिजनेस है उसमें उसका टाइम बहुत जाता है व्यापारी का, वो बिजनेस के अंदर काम करता है बिजनेस के ऊपर नहीं करता है। जैसे आपने शुरू में बोला कि मैं फिर गोवा में आराम करूंगा, और ऐसा ऐसा इंटरव्यू शुरू होने से पहले अपना विजन बताया था आपने, ऐसा कंपनी में बनाना चाहता हूं जो मैं गोवा में आराम करूं कंपनी चलता रहे, उसको हम बोलते हैं बिजनेस ऑटोमेशन। तो देखो हमने आपकी भी प्रॉब्लम पकड़ ली ना, आपको भी ये प्रॉब्लम है कि आपको भी गोवा में मजा मारना है और पीछे इंडिया आपका बिजनेस चलता रहे। तो उस आपको क्या चाहिए, टू बिकम अ मैनेजर नॉट ऑपरेटर। हाउ डू यू बिल्ड रिपीटेबल स्केलेबल मॉडल, हाउ डू यू एक्चुअली रिमूव द स्पीड ब्रेकर ऑफ योर बिजनेस, डेथ जोन क्या होते हैं बिजनेस में, अनलॉक कैसे करें टाइम को, 24 घंटे को 24,000 घंटा कैसे बनाएं आप, टाइम बाउंड मीटिंग कैसे। तो बिजनेस ऑटोमेशन हमने एक कोर्स बना दिया इसके लिए, छोटे छोटे कोर्स बना रहे। कर्जे में जो फंस जाता है तो उसमें कर्जे से कैसे बाहर निकले, क्या रेशियोज होती है उसको समझने के लिए, सेंसिटिविटी डेट को कैसे लेना है, फंड का यूज कैसे करना है, आप डॉक्यूमेंटेशन कैसे करेंगे, डेट को रीफाइनेंस कैसे करेंगे। हमने डेट मैनेजमेंट पे कोर्स बना दिया। फिर जैसे आपने बताया भी, मैं चाहता हूँ मेरा पैसा आता रहे, हमने पैसिव इनकम, ये बड़ा फेवरेट कोर्स है, ये बहुत तेज बिका हमारा, प्री बुकिंग में बिकने लग गया। पैसिव इनकम क्या होता है कि बिना काम करे, एक्टिव इनकम में जितना काम करोगे उतना कमाओगे, पैसिव इनकम में आप सो रहे हो अपने आप पैसा आ रहा है। तो हमने पैसिव इनकम पे कोर्स बनाया। फंड रेज करना चाहते हैं, आपको भी हो सकता है कि अपने स्टार्टअप के लिए फंड की जरूरत पड़े, तो आपकी इन्वेस्टर साइकोलॉजी क्या है, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर वर्सेज मनी इन्वेस्टर कौन होता है, वैल्यूएशन आपकी कैसे बनेगी आपकी जो अपनी कंपनी आपने बनाई है। उसके लीगल डॉक्यूमेंट आपको क्या चाहिए, इन्वेस्टर से रिलेशन कैसे बनाओगे, आपको एग्जिट वेल्थ कैसे मिलेगी। अच्छा, कुछ इंडिया में एक और इशू है कि पर्सनालिटीज कमजोर है, उनकी अंग्रेजी में बात नहीं कर पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, इंप्रेशन, कॉन्फिडेंस, बिजनेस राइटिंग, अपनी ब्रांडिंग, कॉर्पोरेट एटिकेट, प्रोफेशनलिज्म रिलेशनशिप में। तो हमने इसके लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम बनाया, हाउ टू सेल, इसके ऊपर मैंने अभी एक इवेंट किया था, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। एक खुशखबरी दे देता हूँ मैं आपके चैनल पे, पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड US का था, वो 10,000 का था, और हमारे इवेंट में जो लोग आए वो आए 1.4 मिलियन। तो 10,000 के रिकॉर्ड को हमने 1.4 मिलियन से बीट किया अभी।
सर, आई पर्सनली फील कि, एंड दिस इज जस्ट फ्रॉम एन आउटसाइड पर्सपेक्टिव, यू हैव गॉट सम अदर लेवल ऑफ एम्पैथी, लाइक दैट इज व्हाट आई फील यू हैव गेन्ड, एंड यू यूज दैट अबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर ह्यूमन बीइंग्स टू क्रिएट योर प्रोडक्ट्स, कि और किसी के दिल और दिमाग की समझ से आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो। तो आई फील कि दैट इज योर बिग दिव्य ताकत फ्रॉम मेडिटेशन, दैट्स वन थिंग। एंड सेकेंडली सर, आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू अगेन, दिस इज अ पर्सनल क्वेश्चन, बट जब आप रात को सो रहे होते हो, वॉट इज दैट लास्ट थॉट इन द हेड? इज इट अबाउट बिजनेस? डू यू थिंक अबाउट गॉड? वॉट इज योर, यू नो, हु इज विवेक बिंद्रा बिहाइंड द बिजनेस?
हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, इसका थोड़ा आंसर अलग है। मैं सोता तभी हूँ जब लास्ट थॉट सारे आने की कोई थॉट भी नहीं बच पाती है। तो दिन भर थॉट्स को इतना यूटिलाइज कर चुका होता हूँ कि मैंने अपने ब्रह्मचारी आश्रम में एक चीज़ सीखी थी कि इतनी मेहनत, इतनी सेवा करो दिन में, इतनी मेहनत, इतनी सेवा करो कि जैसे ही आपका सर तकिए को टच होने वाला हो, टच होने से पहले ही नींद आ चुकी हो। करेंगे पॉइंट। सो तकिए को सर छूने से पहले आप सो चुके हो। तो वो बेसिकली वी वर्क रियली हार्ड, हम बहुत मेहनत करते हैं, हमारी सारी लीडरशिप ही बहुत रेवोल्यूशनरी है, दिन रात हमारी टीम्स मेहनत करती है। हम मानते हैं कि आग सीने में लगानी है, पीछे नहीं लगानी, पीछे लगाओगे तो जल जाएगा, सीने में लगाओगे तो इतिहास रच देगा।
सर, आपका मॉर्निंग रूटीन क्या होता है?
मॉर्निंग आजकल
के अलावा क्या करते हो?
तीन चीज़ें करता हूँ मैं। एक, मैं रोज़ फुटबॉल खेलता हूँ मॉर्निंग में अपनी टीम के साथ, बहुत मज़ा आता है मेरे को, वो मैंने पक्का कर लिया। अब तो मेरे को 3 महीने होने वाले हैं और मैं उसको छोड़ने नहीं वाला। तो रोज सुबह, दूसरा चैंटिंग करना, और तीसरा भगवद गीता पढ़ना। ये तीन चीज़ें फिक्स करी हुई हैं, इनको नहीं टच करना, इधर उधर लेफ्ट राइट नहीं करना। इसमें क्या राइडर डाल दिया, ब्रेकफास्ट इसके बाद लूँगा। अगर ये तीन चीज़ें हो गई तो ब्रेकफास्ट ले लेंगे, ये नहीं हुई तो उसको डिले करके फिर ब्रेकफास्ट थोड़ा डिलेड ले लेंगे। उससे क्या, भूख बहुत लगती है। तो तीन चीज़ें कंप्लीट हुई तो उससे ब्रेकफास्ट का राइडर डाल दिया, बीच में एक टोल गेट है। तो उससे अच्छा डिसिप्लिन आया। बेसिकली क्या, फिजिकल फिटनेस भी हो गया आपका, और साथ में स्पिरिचुअल फिटनेस भी हो गया, और इंटेलेक्चुअल फिटनेस भगवद गीता से, स्पिरिचुअल फिटनेस चैंटिंग से, और फिजिकल फिटनेस फुटबॉल खेलने से।
क्रेजी सर, मैं भी बहुत फुटबॉल खेलता हूँ और बास्केटबॉल बहुत ज़्यादा देखता हूँ, एंड आई फील कि जब आप कोई भी स्पोर्ट खेल रहे हो, स्पेशली कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जो होते हैं, आपकी असली पर्सनैलिटी वो स्पोर्ट में निकल कर आती है। एज एन ऑन द पिच यू आर अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ हु यू आर। तो आई वॉन्ट टू आस्क यू कि वॉट काइंड ऑफ प्लेयर आर यू वेन यू आर प्लेइंग फुटबॉल? आई गिव यू एन एग्जाम्पल। तो आई एम द काइंड ऑफ गाय हु रन्स ऑल ओवर द पिच, आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन, और जहाँ बॉल है मुझे वहाँ होना है, लाइक दैट, एंड आई पुट प्रेशर ऑन द ऑपोजिशन लाइक दैट, आई एम अग्रेसिव ऑन द पिच। हु आर यू ऑन द पिच?
आई एम एम्बिशियस गोल ओरिएंटेड स्ट्राइकर, वेरी क्लियर।
गॉट इट।
तो मेरा Beautiful. क्या, अगर हम लोग 10 गोल का मैच खेलते हैं तो 80% गोल मेरे को मारने हैं इसमें से। तो मतलब मैं थोड़ा बहुत स्ट्राइकर माइंडसेट का आदमी हूँ। तो वो आपने बोला पर्सनालिटी सामने आता है, क्या बोली बात आपने, जबरदस्त है, आपसे बहुत सीखने को मिलता है रणबीर भाई। हाँ, सो बिल्कुल ठीक, पर्सनालिटी सामने आता है। आई एम वेरी वेरी फोकस्ड पर्सन। तो बॉल हाथ में आनी चाहिए तो मैं निकाल के ले जाऊंगा उसके बाद। सो वो ऐसा लाइफ भी ऐसा ही रहना चाहिए, अपना जो फोकस है ना, सी आइदर योर फोकस्ड पर्सन, either you're a focused person or you're a failure, there's nothing in between.
Crazy. Or sir, like, what do you think, like, internally, and I'm not asking you about Krishna ji, who are your 3 biggest idols outside of the world of business? Like, where are you drawing your inspiration from? Because I feel every man needs those reference points.
जी, बहुत अच्छा बोला आपने। मैं कहाँ से इंस्पिरेशन लेता हूँ, मैं ना आपको बताता हूँ। सी, फर्स्ट थिंग इज़ आई एम अ वेरी इंट्रोवर्ट गाय।
ओके,
लोगों को लगता है मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, लेकिन मैं आपको फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं ना तो किसी शादी में जाता, ना किसी से मिलता, ना मैं कहीं दोस्ती करता, ना मैं लोगों से मिलता। और क्योंकि मेरा सोशल सर्कल मैंने बिल्ड ही नहीं किया है, फैमिली सर्कल बिल्ड नहीं किया है, बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया मैंने उसको, कॉन्शियसली नहीं दिया, मुझको मालूम है आई एम नॉट अ वेरी सोशलाइजिंग काइंड ऑफ अ पर्सन। सो मेरे जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है वो मेरी लीडरशिप है, जैसा मैंने आपको बताया है। ये थोड़ा डिफिकल्ट टू बिलीव लगता है, ऐसा भी लगता होगा लोगों को, क्या बोल दिया है, कोई रियल आंसर नहीं दिया है। नहीं, रियल आंसर है। ये रियल आंसर इसलिए है क्योंकि मैं अपनी लीडरशिप के साथ सबसे ज़्यादा समय बिताता हूँ, मैं उनके साथ बहुत टाइम देता हूँ, मैं उनको ध्यान से समझता हूँ, उनसे सीखता हूँ। मेरा रूल क्या है, अपने से इंटेलिजेंट आदमी लेकर के आओ और उनके रास्ते से हट जाओ।
क्रेजी सर। सर ये फैमिली ना होने की वजह से आपको कोई कमी फील होती है? डू यू फील एनी काइंड ऑफ वॉइड एट ऑल?
तभी तक,
बिकॉज़ यू आल्सो ह्यूमन,
तभी तक फील होती थी कमी जब तक कोई मिशन नहीं था। जिससे जैसे ही कोई मिशन आ जाएगा ना, तो एक ये रूल है कि मिशन और वैक्यूम ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है। तो वो जो कमी है ना वैक्यूम, वो कम होती चली जाएगी जब मिशन बढ़ता चला जाएगा, और जब मिशन घटेगा तो वैक्यूम बढ़ता चला जाएगा। यू हैव टू डिसाइड आपको देखना कहाँ पे है। सी, जब आप गोल पे फोकस करते हैं तो ट्रबल्स खत्म हो जाते हैं, जब ट्रबल्स पे फोकस करते हैं तो गोल खत्म हो जाता है।
क्रेजी, ब्यूटीफुल सर। एंड वन लास्ट क्वेश्चन फॉर यू फॉर द पॉडकास्ट टुडे सर, कि आई नो यू आर द काइंड ऑफ पर्सन हु हैज नो रिग्रेट्स इन लाइफ, यू आई नो दैट अबाउट यू विदाउट यू सेइंग इट, बट अगर आप 16-year-old विवेक बिंद्रा को आज मिलेंगे तो आप उसे क्या कहेंगे?
उसे यही कहूंगा, जल्दी से भगवद गीता पढ़ना शुरू कर, शुरू के कुछ साल तू बेकार कर रहा है।
ब्यूटिफुल सर, थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट यू कमिंग ऑन द पॉडकास्ट सर। अगेन बहुत सीखने को मिला आज भी इस पॉडकास्ट पर, बट जेन्यूनली आई कंसिडर यू वन ऑफ माई ऑनलाइन गुरुज। आई फील कि जैसे जब पांडवाज अज्ञातवास में गए थे तो उन्हें कोई ऐसे ऋषि मुनि मिल गए थे, आप मेरे लिए उस प्रकार के एक ऋषि मुनि हो, लाइक जेन्यूनली। एंड आई मेट यू थ्रू यूट्यूब, ऑनर टू टॉक टू यू ऑन द पॉडकास्ट।
मेरे को आपकी एनर्जी बहुत पसंद है, आपकी पॉजिटिविटी, और जो आप काम कर रहे हो ना जबरदस्त तरीके से, फिटनेस से लेके इंस्पिरेशन से लेके सेलिब्रिटीज का इंस्पिरेशन क्रिएट करके ड्राइव करके लोगों को देना, आई विश यू सो सुपर बेस्ट इन लाइफ। आपका जो चैनल है जबरदस्त बियर बाइसेप्स, आई थिंक उसमें से बस थोड़ा बियर का इंस्पिरेशन नहीं देते आप पीने का, बाइसेप्स बढ़ाने का इंस्पिरेशन आप देते हो, वही देते रहो। और आई थिंक आप वेजिटेरियन बन गए, मुझे और अच्छा लगा आपके बारे में पता चल के, दैट्स ऑल्सो अमेजिंग थिंग अबाउट यू। और वेजिटेरियनिज्म का प्रमोट कर रहे हैं, दैट शोज अ लॉट ऑफ कंपैशन दैट यू हैव इन योर हार्ट, एंड योर कंपैशन विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट अ लॉट टू द सोसाइटी। और दूसरा, मैं कोई गुरु तो नहीं हूँ, आई एम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, बट आई एम अ कॉन्ट्रीब्यूटर फॉर श्योर। जो कॉन्ट्रीब्यूशन करने में मैं पीछे नहीं हटना चाहता, वही मेरे जीवन का मिशन है। शरीर किसी भी दिन छूट जाएगा, कुछ परमानेंट नहीं है इधर, कोई सोच के आ रहा है परमानेंट होने वाला, कुछ नहीं होने वाला है परमानेंट, सिर्फ आपका कॉन्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। तो यही हमारी जीवन का मिशन है। धन्यवाद, आई थिंक इट वॉज सो अमेजिंग स्पीकिंग टू यू।
Thank you, sir. Really appreciate it a lot. I can't express my gratitude in words. Guys, I'll link all of Vivek sir's handles down below. Make sure you go subscribe. Make sure you go follow. And make sure you check out badabusiness.com.
Hey, thoda Ranbir bhai ko bhi subscribe kar lena. He's an amazing guy.
Thank you. Thank you so much, Vivek sir. Okay.
Thank you.